जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना धाम, जय जय श्री राधे। जय बरसानो धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे। जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे। राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे। राधा वृंदावन चंद्र राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा। जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव।
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री गौरनिताई की, श्री गौरंग महाप्रभु की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, श्रीमती राधा रानी की, श्री बरसाना धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गोवर्धन धाम की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तप्त कांचन गौरांगी। सब लोग हृदय से पुकारिए, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब लोगों को विनती है कि आपके अलग अलग म्यूजिक को बंद करो ताकि हमारा सब लोगों का ध्यान श्रीमती राधा रानी की कृपा को बटोरने में व्यस्त रहे और मग्न रहे। किसी प्रकार का ध्वनि आपको और आपके ध्यान को राधा रानी के चरणों से हटा सकता है, और वैसे भी राधा रानी के चरणों पर निरंतर ध्यान करना इतना आसान काम नहीं है, उसमें और सारी बाधाएं हम लोग ही बनाएंगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे कि कुछ समय के लिए निरंतर उनके चरणों पर ध्यान करते हुए उनके बारे में श्रवण करेंगे और कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। आप सबका मैं बहुत ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे राधाष्टमी के दिन यहाँ पर आमंत्रण दिया। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब हमारे अपने वृंदावन में थे 1970-71 में, तो उस समय उनको घनश्याम दास बाबा जी मिले और वो एक राजा के पुत्र थे उस समय के। अभी भी राजा संस्थान चलते रहता है, तो उसमें राजस्थान के एक राजा के पुत्र थे वो, यानी कि राजपुत्र थे और अगले कुछ समय के बाद राजा भी बन सकते थे। तो ऐसे ही अपने माता पिता के साथ वो ब्रज घूमने आए थे, लेकिन उनको वृंदावन में ऐसा उनका हृदय छीन लिया गया कि वो वापस ही नहीं गए। उन्होंने माता पिता ने बहुत उनको मनाया, उन्होंने सोचा कि ठीक है लेके कुछ दिन रहेगा फिर वापस लेके आएंगे। वापस आए, वापस गए, वापस आए, लेकिन हर बार घनश्याम का जो दृढ़ निश्चय था वो अधिक दृढ़ होता गया। फिर उन्होंने छोड़ दिया उसको। फिर घनश्याम दास जी बहुत महान भक्त बने। उनको श्री वृंदावन धाम और राधा रानी की कृपा ने ऐसा आकर्षित कर लिया था कि जिन चीज़ों के लिए पूरा विश्व जो है ना वो मेहनत करता है प्राप्त करने के लिए, धनम जनम सुंदरिम कवितां राज्य ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा ये सब उनके लिए रेडीमेड था, खाली यस सर करके कुछ जीवन बिताना था, उसके बाद में आप सब कुछ अपने आप ही उनके जीवन में आने वाला था और था भी पहले से। इतने सारे प्रलोभनों को उन्होंने एक तिनके के समान छोड़ दिया और वो वृंदावन में बस गए। तो ऐसे ही वो यमुना की रेत पर वृंदावन धाम में यमुना बहती तो ऐसे उंगली से लिखते थे रेत पे राधे, फिर कुछ देर बाद उसको मिटाते थे और फिर राधे लिखते थे। ऐसे वो दिन भर कई घंटों घंटों तक यमुना किनारे बैठते थे। तो अभी अभी समझो आपने एक बार लिखा और ऐसे पहुंच दिया तो कुछ रेत जाएगी ना निकल के, फिर वापस लिखा तो वापस और कुछ रेत जाएगी, फिर और कुछ रेत जाएगी। ऐसे करते करते अचानक उनको एक बार ऐसे हाथ में कुछ खटका, ऐसे कुछ तीक्ष्ण चीज ऐसे लगी, तो देखा तो ऐसा एक नोकदार चीज थी उसमें यमुना के रेत के अंदर किनारे में। तो उन्हें और हाथ से ऐसा किया तो कुछ ऐसे प्रकट हो गया ऐसे, फिर और खोदा तो राधा गोपीजन वल्लभ के विग्रह प्रकट हो गए। देखिए कैसे कृपा है राधा रानी की। ऐसे ही वो ध्यान मग्न होकर राधा रानी का नाम लिखते लिखते अपना चिंतन पूजन मनन कर रहे हैं तो राधा रानी स्वयं प्रकट हो जाती और वो विग्रह के नीचे जो आसन होता है ना उधर लिखा है गोपी जन वल्लभ, ऐसे उसके स्टैंड पे ऐसा कार्विंग किया है उसका। तो उनका निवास स्थान जो था वो राधा वल्लभ जी के मंदिर के पीछे, एक ऐसे दो चार घर हैं मंदिर के पीछे, उस एक घर में वो उन घर के बरामदे में रहते थे और बरामदे में उनका एक ऐसा कपाट था, उसके अंदर एक अलमारी थी, उसको खोलकर विग्रहों को उन्होंने वहां पर स्थापन कर दिया। और वह बहुत दिन बीत गए उसमें, बहुत बूढ़े भी वृद्ध हो गए वो, और वो इतने महान भक्त थे राधा रानी के। तो उनकी मुलाकात फिर रिचर्ड से हुई जो उस समय भगवान की कृपा की खोज में दुनिया भर यात्रा कर रहे थे। तो घनश्याम दास बाबा की जो भक्ति थी भाव था उसको देखकर बहुत प्रभावित हो गए। वो ऐसे भोजन बनाते थे ना, वैसे हम लोग तो उसको कभी नकल नहीं कर सकते, ना कीजिए आप कभी, वैसे एक ग्रास निकाल के ऐसे मुंह में खिलाते थे कृष्ण को और राधा रानी को, फिर दूसरा आइटम फिर तीसरा आइटम, फिर उनका मुंह पोछते थे, फिर उनको जल पिलाते थे। ऐसी भाव भक्ति थी उनकी, कभी भी हम उसकी नकल नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। और इतना उनका भाव था कि वो रिचर्ड यानी राधानाथ स्वामी महाराज को कहते थे कि आप, मैं तो राधा गोपीजन वल्लभ का दास हूँ, राधा रानी का दास हूँ, आप तो राधा रानी के मेहमान हैं, आप तो अतिथि हैं। ऐसे करके उनकी सेवा करते थे, जितना सा बनाते थे रोज तो वही पाते थे, लेकिन जब ये आ गए तो सारा उनको ही देने लगे और अधिकतर उपवास ही करने लगे। और वो देते नहीं, आप खाइए आप खाइए, नहीं 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 आप राधा रानी के मेहमान हो, मैं उनका दास हूँ। फिर रात को ठंड लगती थी तो एक ही ब्लैंकेट था तो फिर वो उनको पहनाते थे, फिर रोज वो मुठभेड़ रोज की, नहीं 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 आप पहनो, आप ज़्यादा वृद्ध हो, मैं तो जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं अमेरिका से आया हूँ, मुझे पता है ठंड का कैसा होता है ये सब। वो फिर वो झिकझिक झिक करके जीतता कौन था, घनश्याम दास बाबा जी। फिर वो राधानाथ महाराज पर वो ब्लैंकेट पहनाते थे तो बीच रात में राधानाथ महाराज उठते थे और अलगद जाके वो ब्लैंकेट उनके शरीर पर डालते थे, क्योंकि उनका जो वो ठंड से कांपने का आवाज़ था ना, वो कांपते थे रात को, तो वो आवाज़ से ये उठ जाते थे और फिर वो जाके उनको वो कंबल पहनाते थे और कुछ अगर वार्म हो गया ना तो तुरंत जग जाते थे वो कि वार्म कैसे हो गया, तो ब्लैंकेट शरीर पे तो तुरंत उठ के वो उनके शरीर पर डालते थे। ऐसे रात भर चलता था सिलसिला, ऐसे भक्त थे वो। और कभी भी हम लोग कैसे भी बहुत सारा मनाते मनाते बाद में ठीक है जो भी है ऐसे हो जाते ना अपना क्या करेंगे, शहर का जो भाव होता है थोड़ा बहुत हम लोग लगाते हैं अपना, चिकाटी, उसके बाद में फिर छोड़ देते हैं उसे। लेकिन ये कंसिस्टेंट थे, सातत्यपूर्ण। तो मैं ये सब कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब वृंदावन से राधानाथ महाराज का वहाँ से जाने का समय आया, उन्होंने सोचा अभी ठीक आगे जाना चाहिए, तो उस समय घनश्याम दास बाबा जी ने बताया कि आप बरसाना जाइए और वहाँ राधा रानी की कृपा आपको मिलेगी। तो ये घनश्याम बाबा जिन्होंने हमारे गुरुदेव को वो निर्देश किया कि आप बरसाना जाइए, वहाँ राधा रानी आप पर कृपा करेगी। फिर वहाँ से चल के गए और जब बरसाना पहुँचे तो बरसाना का दर्शन किया उन्होंने और मान मंदिर की ओर जा रहे थे। वो जो रास्ता जो है, तभी तो ठीक तरसा नहीं था, अभी बहुत सुंदर रास्ता बना है पहाड़ पहाड़ के ऊपर। तो महाराज जी लिखते हैं कि उस यात्रा में, मतलब राधा रानी के मंदिर से मान मंदिर से मंदिर तक जो यात्रा थी, उसमें उनको बहुत अद्भुत अनुभव आए। पता नहीं, हम लोग कई बार गुजरे, कुछ अनुभव नहीं आया हमको लेकिन उनको बहुत दिव्य अनुभव आए वहाँ पर। और जो नींव थी उनकी, वैसे जन्म जन्मांतर तक की भक्ति है गुरु महाराज की, लेकिन इस जन्म की यात्रा के अंदर जो प्रकट लीला में जो नींव थी उनकी, वो वहाँ पर रखी गई राधा रानी के धाम में। 6 महीने तक निवास किया उन्होंने। तो हमारे लिए जो कृपा का स्रोत है वो उधर से ही है। तो राधा रानी कृष्ण भगवान की प्रिय सखी है, परमेष्ट प्रिय सखी, सबसे सर्वश्रेष्ठ सखी। ऐसे कहते हैं कि राधा रानी का ग्रुप छोड़कर केवल चंद्रावली का ही ऐसा ग्रुप है जो बहुत राधा रानी कृष्ण भगवान को प्रिय है, उसके बाद बाकी सखियों के युद्ध आते हैं। तो ऐसी राधा रानी का आज जन्मदिन है और श्री कृष्ण भगवान की कृपा सब लोग चाहते हैं और जन्म जन्मांतर तपस्या भी करते हैं, व्रत भी करते रहते, तड़पते रहते हैं। योगी जन, तपस्वी जन, ध्यानी जन, सिद्ध मार्ग पे चलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग, वो सब लोग अनंत जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि इतनी सारी तपस्या, व्रत, साधना, त्याग, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, सब कुछ करने के पश्चात भी श्री कृष्ण भगवान के जो 20 नाखून हैं दिव्य, उसमें से जो अनंत आभा निकलती है, उसका एक किरण भी उनको दर्शन नहीं होता है, एक किरण का भी दर्शन नहीं होता है। नाखून तो छोड़ ही दो आप, और फिर वो नाखून जिसके हैं उसको भी छोड़ दो, इतने दुर्गम है वो, इतने दुर्लभ है। लेकिन ब्रजवासी कहते हैं कि ऐसे दुर्लभ भगवान जो है वो, उसको ब्रजवासी लोग, गोपियां जो हैं वो अपने बालों की लटकन में बांध के रखते हैं। बालों, हम लोग तो बोलते हैं डोरी से बांध सकते हैं या दोरखंड से बांध सकते हैं, लेकिन वो बाल की चोटी में बांध रखते हैं उसको, अपने बद्ध वश बना के रखते हैं। सत्यव्रत मुनि भी यही कहते हैं दामोदर अष्टकम में कि जो लोग समझते हैं कि मुझे इस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, उस प्रकार से कर सकते हैं, तपस्या से कर सकते हैं, व्रत से कर सकते हैं, उपवास से कर सकते हैं, त्याग से कर सकते हैं, दान पुण्य से कर सकते हैं, वो सब लोग भ्रम में हैं। ऐसे भगवान बहुत दिखा रहे हैं उनको, आप सब लोग भ्रम में हो, वो अपने ये दुनिया की जो चीज़ें हैं जो मैंने ही आपको दी है उसी को मुझे दिखाकर प्रभावित कर सकते हो, ये आपका बड़ा भ्रम है। बार बार बताना चाहते हैं कि मैं केवल प्रेम भक्ति का भिक्षुक हूँ, जहाँ प्रेम भक्ति है वहाँ पर न केवल मैं आकर्षित होता हूँ, न केवल मैं प्रभावित होता हूँ, लेकिन मैं उनका हो जाता हूँ, उन्हीं के वश में चला जाता हूँ, उन्हीं के नियंत्रण में रहता हूँ और सारा जीवन उनके नियंत्रण में मैं डोलते रहता हूँ। ये वास्तव में रहस्य है। और उनको अगर आकर्षित करना है तो जीव के अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसके बल पर वो श्री कृष्ण को आकर्षित करें। जीव केवल जो भक्ति का स्रोत है, प्रेम का स्रोत है, उसकी शरणागति स्वीकारने से ही उम्मीद है कि वो उनको आकर्षित कर सकता है, और वो है राधा रानी। और राधा रानी इतनी, क्या कहते हैं, भगवान कठोर नहीं है, भगवान भी बड़े कोमल हृदय हैं, लेकिन भगवान जैसे पति पत्नी में सहज अगर आपको आदान प्रदान करना है तो आप पत्नी के माध्यम से जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा वो थोड़ा सा. वट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे इट इज इजियर टू गो थ्रू माता जी. उसी प्रकार से भगवान बड़े दयालु हैं लेकिन उनकी दया इतनी सहज नहीं है जितनी राधा रानी की दया सहज प्राप्त है. क्योंकि राधा रानी बहुत ज़्यादा नाप तोल नहीं करती. कृष्ण भगवान बहुत नियम के पक्के हैं. वो किसी को भी कृपा देने के क्या कहते हैं वो अनन्यस चिंतयन्तु माम. ये शब्द छोड़ा ना बाकी सब कुछ आसान है. अभी समझा अभी अनन्यस चिंतयन्तु छोड़ दो. अनन्यस चिंतयन्तु माम योजना पर्युपासते. आगे क्या है तेषां भी युक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम. बाकी सब कुछ बढ़िया है बहुत लेकिन अनन्य चिंता डिफिकल्ट है. और वो अनन्य मतलब कैसे 99.99 और 99% भी वो नहीं पसंद करते. वो जो 0.0001% है वो भी उनको चाहिए. तब तक वो छोड़ते ही नहीं है कुछ अपने हाथ से. लेकिन राधा रानी और उनकी जो सेविकाएं हैं ललिता जैसी वो बहुत दयालु हैं. वो क्या करते हैं अनंत दोषों के सागर के बीच में भी अगर एक चिंगारी होगी थोड़ी सी मराठी में बोलते धाकधुक मतलब अभी दिखना दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है कुछ वहाँ पर दीपक की योग चांसेस है तो उसी को वो देखते हैं वो. और वो देखकर ही उस व्यक्ति को अपने गोद में कर लेते हैं और बाद में अपने गोद में लेकर उनको तैयार करते हैं और कृष्ण भगवान को अर्पण करने के योग्य बनाते हैं और फिर कृष्ण भगवान को अर्पण करते हैं. तो राधा रानी जब स्वीकार करती है और राधा रानी जब अपने तरीके से तैयार करती हैं भक्तों को और जब वो कृष्ण भगवान को अर्पण करती हैं तो राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण भगवान के ऊपर उसके कारण कृष्ण भगवान उनको त्याग नहीं सकते हैं जिनको वो अर्पण करना चाहती हैं. और राधा रानी कैसी है जितने लोग इस विश्व में हैं और जो समझते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं या भक्त बनना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने की या विचार कर रहे हैं कि भक्ति करना चाहिए. बहुत सारे ना ऐसे अलग अलग स्तर हैं. Somebody is planning for the whole life कि I want to become devotee and the life ends. ऐसा भी होता है. विचार करने में संकल्प करने में जीवन चला जाता है. तो उन सारे लोगों को राधा रानी जब स्वीकारती है और भगवान को अर्पण करने का प्रयास करती है तो उसका भाव कैसा है ये भी अच्छा डिवोटी इसको ले लो आप. ऐसा नहीं भाव उनका. कहते हैं कि ये मुझसे अच्छा डिवोटी है बहुत महान डिवोटी है जो भक्ति का स्रोत है जिन सबके हृदय में भक्ति का जो भी कुछ कण है वो उन्हीं के तरफ से आया है. वो अनंत सागर से उनका एक कण प्राप्त हो गया है. उनको भी वो कहती है कि ये हम सबसे बहुत अच्छा भक्त है इसको आप स्वीकार करो. ये भाव जो है ना कैसा है कि विश्व में जरा सा ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी हम लोग इतना इतना गर्व कर लेते हैं. इतना सा थोड़ा सा 2,000 रुपया पगार में इंक्रीमेंट हो गया ना तो भी ऐसा 2 किलो मास चढ़ जाता है. इस साल में इतना इंक्रीमेंट प्राप्त हो गया है फिर एक प्रमोशन हो गया तो और ज्यादा फिर वो गाड़ी आ गई तो फिर क्या बोलें. तो ऐसा हमारी स्थिति है. थोड़ा थोड़ा सा चीज पाने पर इतना हमारा गर्व जो है ना वो डिसप्रोपोर्शनेटली ऐसे बढ़ जाता है बहुत. लेकिन ये सारे चीज प्राप्ति करने के बाद भी जो नम्रता बनाए रखता है सभी आचार्य कितने आचार्यों का आप उद्धृत करें सभी आचार्यों ने कहा है कि धन दौलत प्रतिष्ठा पद अधिकार सम्मान ये सब प्राप्त होने के बाद भी जो नम्रता बनाए रखता है वो राधा रानी की कृपा ही मानी जाती है. बिना राधा रानी की कृपा से कोई व्यक्ति ये सब भौतिक प्राप्तियां होने के बाद भी नम्रता बनाए रखना नामुमकिन है. और एक राधा रानी और एक चैतन्य महाप्रभु इन दोनों की कृपा के बगैर ये सभी चीजें होते हुए भी उसमें लिप्त ना होना उससे प्रभावित नहीं होना उससे प्रभावित होकर व्यवहार नहीं करना ये सब जो चीजें हैं ना जो बहुत दुर्लभ है वो राधा रानी की कृपा से सफल हो सकते हैं प्राप्त हो सकते. और हमारी भक्ति के कार्य में यही एक समस्या है क्योंकि तो भक्ति के विषय में भी भक्ति में प्रवेश करने के बाद भी जो जो प्राप्तियां होती रहती है ना वो कभी आप सीनियर डिवोटी कहलाए जाएंगे कभी आप काउंसलर बन जाएंगे कभी टेंपल के प्रेसिडेंट बन जाएंगे कभी कुछ प्रोजेक्ट के इंचार्ज बन जाएंगे. वो कैसा है ना वो माया देवी भी साथ साथ चलती है हमारी। हाँ, भक्ति मार्ग जो है जिसने अपना लिया है वो उस पर बहुत ज्यादा बड़ी दूरबीन लगाती है, कहाँ पकड़े उसको, कहाँ गिरा दें। और भगवान के ही इच्छा से उनका एक प्लानिंग रहता है। माया देवी कोई हमारी दुश्मन नहीं है, माया देवी हमारी हितैषी है। वो कृष्ण भगवान से चर्चा करके क्या जरूरी है इस भक्त के लिए उसके लिए देते रहती है परीक्षाएं और सब कुछ। और हमको लगता है कि केवल कष्ट जो है वही उसका ये है योजना है, लेकिन जो प्रतिष्ठा मान सम्मान धन दौलत प्रगति देती है वो भी उसकी योजना है। देखते रहते कितना लिप्त होता है। तो उस समय जो राजा रानी के चरणों को पकड़ के रखा है वो इनके लोक प्रलोभन से आकर्षित नहीं होता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। जब सबसे पहले 1986 में हम लोग सबसे पहले वृंदावन यात्रा में गए थे, उसमें कितने लोग थे कुछ आइडिया आपको? कह रहे 200। और किसी को आइडिया कुछ? 22 लोग थे केवल। आज तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि 22 लोगों की यात्रा हो सकती है, उसके बाद में कोई अप्लाई नहीं कर रहे तो वो 22 लोगों की यात्रा में आप और भी एक बताता हूं कि वो आप अकल्पनीय है आज के लिए, अविश्वसनीय है कि मथुरा स्टेशन पे हमको लेने के लिए महाराज आए थे। पश्चिम एक्सप्रेस से हम उतरे और वहां पर महाराज इज वेटिंग फॉर अस। और हम लोग उतरे और हम लोग को पहले बता दिया था कि उतरते ही मथुरा धाम को प्रणाम करना है, तो हम लोग सब लोगों ने प्रणाम किया स्टेशन पे ही। लोग देख रहे थे क्या कर रहे हैं स्टेशन पे, सब लोगों ने प्रणाम किया। और उधर ही एक छोटा सा कमरा पता नहीं कहां से ढूंढ लिया, उधर ही महाराज ने एक प्रवचन दिया, वेलकम टॉक और वृंदावन यात्रा। आज तो ये सब चीजें उनले आप स्वप्न में ही देख सकते हैं, लेकिन वो प्रवचन में उन्होंने थोड़ा वृंदावन धाम का गौरव किया, थोड़ा सा हमको तैयार करने का प्रयास किया कि वृंदावन धाम में कैसे रहना चाहिए। तो उसमें एक वाक्य उन्होंने कहा था कि इस क्षण से जितने भी क्षण आपको वृंदावन धाम में मिलेंगे और वापस लौट कर आप मथुरा स्टेशन आएंगे और ट्रेन में बैठेंगे वापस जाने के लिए, तब तक निरंतर आपको हर क्षण हृदय के अंदर के कोने में श्रीमती राधा रानी की कृपा याचना करती रहनी चाहिए, ऐसा बताया था। क्योंकि श्री वृंदावन धाम में जिसको जाने की इच्छा है तो आप शरीर से जा सकते हो, आप टिकट निकाल सकते हो, कंफर्म करा सकते हो, VIP करा सकते हो, फिर कमरे बुक कर सकते हो, भोजन की व्यवस्था कर सकते हो, बस की व्यवस्था कर सकते हो, टैक्सी की व्यवस्था कर सकते हो, कोई गाइड की व्यवस्था भी कर सकते हो और सब जगह घूम सकते हो। लेकिन जब तक राधा रानी की कृपा हम पर नहीं है तब तक आत्मस्तर पर वृंदावन धाम का प्रवेश नामुमकिन है। आप इतना ही कहेंगे कि वो भारती का लंच अच्छा था बहुत, गोविंदा का ठीक नहीं था, वो MVT में बहुत अच्छा था, यही चर्चा करेंगे आप कि अगली बार अच्छी व्यवस्था करेंगे। और वो बस वाला वो ठीक नहीं था, ब्रज बिहारी वाला, हम लोग अगली बार वो ले लेंगे, ऐसे बात करेंगे। लेकिन आत्मस्तर पर प्रवेश करना है ब्रज में तो राधा रानी की कृपा अनिवार्य है। वो जब तक हमें हमारी भावना को देखकर हम पर कृपा नहीं करती तब तक वृंदावन धाम का स्पर्श आत्मा को कभी नहीं हो सकता है। इसलिए वृंदावन धाम में सब किसको पुकारते हैं? जय श्री कृष्णा, ऐसा बोलते हैं क्या? कोई नहीं जय श्री कृष्ण बोलता, सब जानते हैं कि वही मालिक है, उनकी कृपा सबको चाहिए, लेकिन सब बड़े होशियार भी हैं और जानते हैं कि मालिक को बोलेंगे तो मालिक देखेंगे भी नहीं, उनको पता है कि बटन किधर है उसका तो सब लोग क्या बोलते हैं? जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। कुछ लोग सोचते हैं कि वो रिक्शा वाला बोल रहा है राह दे राह दे राह दे, मतलब रास्ता तो आगे जाना है, लेकिन वो राधे राधे ही बोलते रहते हैं। तो यहां तक कि व्यक्ति नहीं, केवल पत्ता पत्ता भी, लता पता भी वहां का राधे राधे पुकारता है, हर डाल पे राधे राधे की पुकार, हर पंछी हर जीव वहां का राधा रानी को ही पुकारते रहता है। आप कभी शांति से बैठकर पीली पोखर पे बैठिए और बहुत पक्षी बोलते हैं वहां पर, तोता मोर कोयल किंगफिशर, ऐसे बहुत सारे अद्भुत पक्षी वहां पे आते हैं। अब सब अपने अपने आवाज आप ध्यान से सुनिए, आपको अनुभव होगा कि सब राधा रानी को ही पुकार रहे हैं, क्योंकि वो सारे पक्षी जितने भी जीव हैं वो सब जन्म लेते हैं उसी के लिए, उनको पुकारने के लिए। ऐसा धाम है उनका वृंदावन बरसाना, कि वहां पर ऋषि मुनि तपस्या करके पेड़ के रूप में जन्म लेते हैं, ताकि वो धाम में रहकर उस धाम के भूमि से जल को स्वीकार करते हुए केवल राधा रानी को ही स्मरते रहे। पांडवों ने भी वहां पर 5 पेड़ के रूप में जन्म लिया था और भजन कर रहे थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने स्वप्न दिया था कि हमें मत काटो रेनोवेशन के कार्य में, हम लोग यहाँ 5 भाई भजन कर रहे हैं। तो राधा श्याम कुंड जो है वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना, राधा कुंड जो है चौकोनी बना। तो ऐसे महान जीव वहां पर वेली बनकर वृक्ष बनकर निरंतर राधा रानी का भजन कर रहे हैं। और ये बाकी भक्त लोग तो करेंगे ही, क्योंकि वो अभी रहस्य जान चुके हैं कि इनको प्राप्त करना है तो इन्हीं को पुकारना है। ये भक्त लोग जान चुके हैं, संत लोग जान चुके हैं, आचार्यगण जान चुके हैं, सबको समझा भी रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जिस कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए हम जैसी राधे बोल रहे हैं, ताकि राधा रानी की कृपा से उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, वो भी स्वयं राधे राधे ही बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है सबसे। वो आते ही उधर है, उसलिए निरंतर वो राधा रस सुधा निधि करके ग्रंथ है, हमारे गौड़िया आचार्य हैं प्रबोधानंद सरस्वती, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, बहुत अद्भुत। एक एक श्लोक को समझने में एक एक महीना जा सकता है, ऐसे बहुत गहरा ग्रंथ है वो, और किसी का अधिकार भी नहीं है उस पर वाणी, उस वाणी पर भाष्य करने का, ऐसा बहुत ही गहन ग्रंथ है वो। उसमें वो लिखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान भी खुद की साधना करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान केवल हमको बताते हैं आप साधना करो, मन मना भव मत भक्तो, लेकिन स्वयं भी जो कह रहे हैं उसका आचरण कर रहे हैं। उनकी भी आराध्या देवी राधा रानी है, और उनके 2 चरणों पर निरंतर ध्यान करते हुए द्वयक्षरी मंत्र राधा का वो जप करते रहते हैं। और जब वो ऐसा जप करते हैं, कालिंदी तट हाँ मंदिर, कालिंद उसका श्लोक है वो, कालिंद तट के मंदिर में बैठकर वो जब भजन करते हैं तो वो इतने मग्न हो जाते हैं कि सांवला रंग के कृष्ण जो है वो गौर वर्ण के बन जाते हैं, स्वर्ण कांति के, इतने वो उनका नाम और उनके चरणों पर ध्यान करते हुए राधामय हो जाते हैं। और राधा रानी भी स्वयं ऐसे आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये व्यक्ति को कभी वृंदावन में देखा नहीं हमने, सब कुछ कृष्ण जैसा है, मोर पंख है, पीताम्बर है, सारे अलंकार है, सब कुछ है, लेकिन रंग स्वर्ण कांति वाला है, ये क्या रहस्य है। तो वो जाकर उनको स्पर्श करती है तो फिर वो पुनः बाह्य चेतना में आ जाते हैं। ये कहां पर हुआ? इमलीतला में। इमलीतला में रास लीला छोड़कर जब भगवान आए तो भगवान को भी रहा नहीं गया, वो एकदम व्याकुल हो गए, खुद भी व्याकुल हो गए, लेकिन किसी कारण से वो रास लीला को छोड़कर गए थे शरद ऋतु के रासलीला के बाद बीच में। तो जब वो वहां बैठकर इमलीतला के इमली पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं, जमुना किनारे रमुना के रेत पे बैठकर पेड़ के नीचे राधा रानी के 2 चरणों पर निरंतर ध्यान करते हुए मुख से राधा राधा चिंतन कर रहे हैं, तो राधा रानी आके स्पर्श करती है तो पूरा वो सांवले रंग के हो जाते हैं। तो राधा रानी को पूछती है ये क्या रहस्य है, तो कहते हैं आपको छोड़कर जब मैं आपके ध्यान में मग्न हुआ तो ऐसी मेरी विचित्र अवस्था हो गई, और वो अवस्था में मुझे इतना दिव्य आनंद प्राप्त हुआ कि मैंने पहले भी कभी भी उस आनंद का अनुभव नहीं किया था, इतना दिव्य आनंद मुझे प्राप्त हुआ। और मैं अभी उस कुछ क्षण के, क्योंकि आपने स्पर्श किया तो मुझे बाह्य चेतना में आना पड़ा और मेरी वो अवस्था समाप्त हो गई, तो अभी मैं उस कुछ क्षणों के कुछ समय के आनंद से इतना क्या कहते हैं उसको प्रभावित हो गया हूँ, प्रलोभित हो गया हूँ, इतनी प्रेरणा मिली मुझे कि मैंने अभी सोच लिया है कि मैं एक पूरा अवतार खर्च करूंगा। सोच सकते हैं श्री कृष्ण भगवान कैसे है ना, हमारे देखो बहुत सारे लोग सीईओ होते हैं, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई बड़े कंपनी का विश्वव्यापी कंपनी का मालिक होता है, उनके एक एक मिनट की कीमत होती है, उनका एक एक मिनट मतलब इतनी वैल्यू होती है, तो श्री कृष्ण भगवान के एक क्षण की वैल्यू कितनी होगी, सोच सकते हैं ना। वो तो निर्माण करता है, सृजन के निर्माण करता है वो, उनके एक क्षण की कितनी कीमत होगी, इसमें एक लव मात्र की कीमत क्या होगी। और वो व्यक्ति यहां पर आकर लीला कर रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि मैं एक अवतार खर्च करूंगा उसके लिए, 48 साल दूंगा पृथ्वी पर, वो जो मैंने कुछ समय के लिए अनुभव किया है उसको समझने के लिए, उसकी गहराई को, उसके विस्तार को, उसके मतितार्थ को, उसके सार को समझने के लिए मैं भी 48 साल दूंगा उसके लिए, ताकि वो जो कुछ समय का आनंद है वो मैं 48 साल तक उसको अनुभव करते रहूंगा। तो अभी आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो जो कुछ समय में उन्होंने राधा रानी का नाम लेकर जो आनंद का अनुभव किया वो कितना अनंत होगा, जिससे आनंद घन, आनंद सागर, आनंद के स्रोत श्री कृष्ण भी इतने प्रभावित होकर उसके लालायित हैं और उसके लिए भी अपना प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, वैसे श्री कृष्ण भी कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा राधा रानी का नाम का भजन श्री कृष्ण करते हैं। कई जगह पर वर्णन आता है उनका, जहां जहां भी उन्होंने रास लीला छोड़ी है या तो कृष्ण भगवान लीला से अलग होकर एकांत में बैठे हैं, वहां वहां पर वो केवल निरंतर राधा रानी का ध्यान करते हैं। यहां तक कि हमको, हमने भक्तों ने पूछा था एक बार, वो राधा पार्थी क्या होता है, वो दिल्ली में मंदिर है इस्कॉन का, उसमें विग्रहों का नाम राधा पार्थी है। तो पार्थी तो अर्जुन के साथ में युद्ध में कोलाहल में शोर में कोई गालियां दे रहा है, कोई गर्जना कर रहा है, कोई मृत्यु की करुण पुकार कर रहा है, कोई कुछ और चावा आक्रमण सावधान ऐसे बोल रहा है, उधर कहते हैं कि कुछ सुना ही नहीं पड़ता है। इसलिए वो सारथी क्या करता है, सॉरी रथी क्या करता है, महारथी सारथी को कम्युनिकेट करने के लिए और कोई साधन नहीं है, उसके सामने है वो, ऐसे इधर है इधर नीचे, लेकिन वो उसको कुछ बोल नहीं सकता है कि राइट में लो लेफ्ट में लो तुरंत यू टर्न ले लो, वो कुछ बोल नहीं सकता है। तो क्या करते हैं वो, लात मारते हैं उसको, बीच में मारेंगे तो स्ट्रेट जाएगा, राइट में मारेंगे तो राइट जाएगा, लेफ्ट में लत्ता प्रहार करेगा तो दक्षिण दिशा में जाएगा। ये सब कृष्ण भगवान ने सहन किया अर्जुन के लिए प्रेम के वश, ऐसे हमारे प्रेमी भगवान है। तो वो कोलाहल में पार्थ सारथी, आप कह सकते हैं अर्जुन अर्जुन पार्थ सारथी या पार्थ सारथी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन राधा पार्थ सारथी कैसे कह सकते हैं? तो उसका उत्तर दिया गया कि वो रण में हो या ब्रज में हो या वैकुंठ में हो या और कहीं भी कुछ लीला कर रहे हो या द्वारका में हो हस्तिनापुर में हो, वो राधा रानी को एक क्षण भी भूल नहीं सकते। उनके हृदय में राधा ही है, जब वो भगवद गीता भी बोल रहे हैं वो उन्हीं की कृपा से और प्रेरणा से बोल रहे हैं। अलग दूसरे से आप भगवद गीता को श्रवण करेंगे तो आपको लगेगा कि राधा रानी ही बोल रही है, इतना बड़ा सिद्धांत जो है। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, अल्टीमेटली भक्त को जीव को जीवन में क्या करना है वही तो भगवान बता रहे हैं, और वो क्या करना है, वो भक्ति करनी है। वो क्योंकि और क्यों करनी है, कृष्ण भगवान की प्राप्ति के लिए करनी है। तो वो कौन बता रहे हैं, वो नॉलेज किसका है, राधा रानी का है। राधा रानी बता रही है कि इनको प्राप्त करने के लिए क्या करना है। फिर वो गोस्वामी ने जो लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, वो भी क्या है, वो राधा रानी का ही मंतव्य है पूरा। इसलिए रूप गोस्वामी का जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो स्वयं राधा रानी कहा गया है, इस लाइक भागवतम स्वयं कृष्ण है, वैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु साक्षात राधा रानी है। राधा रानी के मन के गहराइयों में क्या है वो सब रूप गोस्वामी ने उद्धृत किया है भक्ति रसामृत सिंधु में, एकदम क्या कहते हैं विश्लेषक रूप में, विस्तार रूप में, गहराई में, भावात्मक तरीके से, हर तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से रूप गोस्वामी ने राधा रानी का भाव प्रकट किया है। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी भी राधा रानी के जो प्रथम सेवक सेविका है ललिता देवी, उसके अनुयायी है। ललिता देवी प्रथम राधा रानी की अनुयायी है नंबर वन, उसके तीन प्रमुख अनुयायी हैं, एक है लवंग मंजरी, एक है रूप मंजरी और एक है अनंग मंजरी। और लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी है, रूप मंजरी रूप गोस्वामी है और अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन है। तो आप सोच सकते हैं कि सारा जो रहस्य है जीवन का, वो अगर आप खोजते 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 आगे 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 और डीप 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 जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, राधा रानी के चरणों तक पहुंचेंगे। यही रहस्य है और ये रहस्य ब्रजवासी भली भांति जानते हैं, इसलिए उनको ही पुकार रखते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रज का जो साम्राज्य है वो साम्राज्य का साम्राज्ञी जो है वो राधा रानी, और श्री कृष्ण भी हृदय से उनका साम्राज्ञीपन जो है, साम्राज्ञी होने का जो स्थिति है उसको हृदय से स्वीकार करते हैं। ऐसे ही छत्रवन में एक बार नाम ही पड़ा उसका उसके वजह से, छत्रवन में सब लोगों ने सोचा कि हमें अभी हमारे कन्हैया को जो है ना वो राजा बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे राजा है वो, हम मानते हैं उनको स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही एक जगह पर उनको ऐसे ऊंचे आसन पे बिठाया और कुछ फूल वनमाला लेके आए, ऐसे कुछ पत्तों का मुकुट बनाया और अपना तरीके से प्रेम से श्रृंगार किया उनका वनमालाओं से, और एक छतरी धारण किया अवसर पे उनके, और छत्रपति के रूप में उनको घोषित कर दिया। तो उधर राधा रानी और कुछ गोपियां लीला कर रही थी अपनी, तो उनको खबर मिली कि अरे उन्होंने कन्हैया को छत्रपति बना दिया, वृंदावन धाम का राजा बना दिया। तो सखियों को अच्छा नहीं लगा, अरे हमारी राधा रानी छत्रधारी है, छत्र तो उनको धारण करना चाहिए, ये कैसे ग्वाल बाल राजा बन सकता है। बोले तो आक्रमण करो, उसको अरेस्ट करो। हाँ, तो सब गोपियां निकली वहां से झुंड लेकर, और ऐसे सब तरफ से जहां बैठकर वो अपना जैसे सिंहासन है ऐसे बैठ के आनंद ले रहे हैं, राजा हवा दे रहे हैं किसको, ही इज लाइक एंजॉयिंग, अभी अभी राजा बना हूं तो अभी आनंद ले रहा हूँ, सब चारों तरफ से हवा दे रही है, सब लोग कोई गीत गा रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, और उन्हें आराम से राजा बनकर बैठे हैं। उधर से आक्रमण होता है, ऐसे देखो ये दरवाजे से, वो दरवाजे से, पीछे से, आगे से, ऐसे आकर सबको अरेस्ट कर लेते हैं और वो आसन पर राधा रानी को बिठाते हैं। ये हमारी साम्राज्य है, तो अरेस्ट करके रखते हैं, गाली देते हैं उनको, तो छोड़ो छोड़ो बोलते हैं, तो एक ही छत पर छोड़ेंगे, इनके चरणों पर दंडवत करो और ऐलान करो कि मैं नहीं, ये छत्रपति है। ठाकुर जी को भी छोड़ दिया, उन्होंने जाके चरणों में वंदन करके बोला कि आप ही साम्राज्ञी हो, ये छाता की लीला है। तो ऐसे का एक जगह पर नहीं, कई जगह पर है ऐसे। हाँ, श्री कृष्ण भगवान भी सब कुछ निर्माण का सृजनकर्ता होने पर भी हृदय से राधा रानी को स्वीकार करते हैं कि आप ही मेरी मालकिन हो, और कदम कदम के डायलॉग नहीं मानते, केवल कदम कदम पर ये अपने व्यवहार से भी प्रकट करते हैं। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कदम कदम पर व्यवहार से प्रकट करते हैं, हमारे मराठी में कैसे बोलते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदा भी पाउले, है ना। बोलने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं कोई लोग, और जो लोग करते हैं वो संत होते हैं, और उसके चरण हम वंदन करते हैं उनको, और करना चाहिए ऐसे कहा गया है। तो श्री कृष्ण भगवान पहले स्वयं जो कह रहे हैं उसको अनुकरण कर रहे हैं, वो अपने जीवन में उतार रहे हैं, और हमारे लिए बता रहे हैं, अरे भाइयों और बहनों मैं भी उनके चरणों का अनुगमन करने वाला हूं, तो आप लोगों को तो करना ही चाहिए, अगर आप कहते हो आप मेरे भक्त हो, है ना। हम लोग कहाँ जाते हैं, जहां हमारे गुरु जाते हैं उनके पीछे पीछे जाते हैं, जहीं कहां भी ले जा रहे हैं वो ले जाते हैं उनके, हमारा जीवन का मार्ग ही उनके चरणों का अनुगमन करना है। तो कहते हैं आप सब लोग अगर मेरे चरणों के अनुयायी हो तो मैं उनके चरणों का अनुयायी हूं, आपको मेरे पीछे पीछे उनके चरणों में आना है। आप ऐसा नहीं करते, आपको रॉन्ग रास्ते पे क्यों लेके जा रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं ये राज रास्ता है, दिस इज राज मार्ग। तो ऐसा ये हमारी राधा रानी है, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु है, बहुत ज़्यादा शर्त लगाती नहीं है, शर्तें रखती नहीं है, बहुत बड़े ही प्रेम से स्वीकार करती है, थोड़ा बहुत प्रेम भी, थोड़ा बहुत इच्छा भी दिखा दिया प्रामाणिकता से तो स्वीकार कर लेती है। लेकिन उसमें एक बात बहुत जरूरी है, अनंत दुर्गुणों के बीच में भी वो हमको स्वीकार कर सकती है अगर हमारे हृदय में द्वंद्व नहीं है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिप्लिसिटी, वो नहीं होना चाहिए, अंदर एक बाहर एक नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, सादगी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। सरल हृदय भक्त के हृदय के अंदर अगर अनंत दुर्गुण भी होंगे ना तो उसको वो दुर्लक्ष कर देती है और स्वीकार कर लेती है, और वो सरलता के प्रभाव के वजह से सारे दुर्गुणों को वो नष्ट कर देती है। केवल वो सरल हृदय स्वभाव को देखते रहते हुए वो सारे दुर्गुणों को नाश करके वो जो चिंगारी है उसको मशाल में रूपांतरित कर सकती है और कृष्ण के लायक बना सकती है हमको। और ललिता देवी उनसे भी ज़्यादा दयालु है, उनको आदेश ही है, जाओ कहीं भी आपको ऐसे जो लोग मिलेंगे जो ठाकुर जी की चरणों के इच्छुक हैं उनको ले आओ, तो वो ले आते। प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखा है गुंडीचा मार्जन लीला में कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे झूठ मूठ का क्रोध दिखाते हैं और ललिता को, मतलब स्वरूप दामोदर जी को कहते हैं, ये बंगाली वैष्णव जो है इनको कोई शिष्टाचार नहीं है, इनको कोई व्यवहार करने को नहीं आता है, देखो कैसे मेरे चरणों में पानी फेंक कर पी रहे हैं। अरे मैं सन्यासी हूं, मैं थोड़ी ऐसे चरणों का जल किसको देता हूँ, ये जाल डालकर बार बार मेरे चरणों में जल डालकर पी रहे, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, ये कोई तरीका हुआ। कितना मुझे संकोचित कर रहे हैं, जाओ उनको ट्रेनिंग दे दो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, उस समय ललिता जी ने सारे बंगाली गौड़िया वैष्णवों को अपने चरणों में ले लिया, अपने गोद में ले लिया। ये प्रभुपाद जी का वाक्य और ये सत्य है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि मन में बहुत आनंद हुआ, बहुत प्रसन्न हुए वो। तो मैं वो बता रहा था आपको कि ये राधा रानी के नामों का जप और उनकी चरणों का ध्यान करने में कितनी शक्ति है कि स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर एक अवतार खर्च करते हैं उसको अनुभव करने के लिए, और तड़पते रहते हैं वो। हाँ, आप लीला पढ़िए चैतन्य महाचरितामृत की, वो व्याकुल है, ऐसे तड़प रहे हैं वृंदावन जाने के लिए, पागल हो रहे हैं भगवान का नाम लेकर कृष्ण राधा रानी के भाव में। कई एक साल तक जगन्नाथपुरी से कोशिश कर रहे हैं कि वृंदावन धाम जाऊं, तो कह रहे हैं कि वो होली आएगी, उसके बाद में वो आएगा, उसमें रथ यात्रा आएगी, उसके बाद झोले यात्रा आएगी, उसमें वही उत्सव होगा, अब उसके बाद जाइए कर। एक साल उनको ऐसे ही घुमा देते पूरा, फिर वो चले जाते। और वहां पर जाकर क्या है, भाव बेहोश हो रहे हैं, कभी पागल हो रहे हैं, कभी बार बार अश्रु बह रहे हैं, कभी वो मथुरा से निकल रहे हैं तभी भी वो गिर जाते हैं ऐसे। तो उधर स्वरूप दामो सॉरी उधर बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास राजपूत वगैरह वगैरह है उनके साथ में, वो कोशिश कर रहे हैं उनको होश में लाने के लिए। उसने में पठान आता है वहां से शस्त्र लेकर, उसके साथ में 50 पठान सैनिक है ऐसे जोरदार। वो सोच रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लुटना चाहते हो, कुछ धतुरा खिला के कुछ विशुद्ध करके कुछ लुटना चाह रहे हो उसको। एक्चुअली उनको लुटना था उसको, क्योंकि वो उनका एकदम गोल्डन स्वर्ण कांति और वो आभा देखकर बहुत प्रभावित हो गए थे वो, बोले उसको कुछ लिया जाए उनसे जाके, उल्टे ही डांट रहे उनको। तो वो राजपूत जो थे एकदम रोष में आ जाते कि युद्ध करने को तैयार हो जाते, उतने में महाप्रभु जग जाते हैं और क्या कहते हैं उसको पठान को, कहते मुझे ना एपिलेप्सी की बीमारी है, बार बार ऐसे मुझे फिट आती है, तो इनको कुछ दोष मत दो, ये मेरे दोस्त लोग हैं, इन क्या कर रहे हैं अभी, मुझे फिट आ गए तो वो क्या कर सकते हैं, हवाई दे सकते ना। तो वो आप सोच सकते हो कि राधा रानी के ध्यान में ऐसे बार बार गिर जाते हो। इसलिए राधा रानी ने उनको कहा था कि आप तय कर रहे हो कि आप जाओगे मेरे भाव लेकर और 48 साल तक आप लीला करोगे, तो मुझे डर है इस बात का कि आप बार बार गिरोगे, पत्थर में गिरोगे, कंकड़ में गिरोगे, कांटों में गिरोगे, जल में गिरोगे, वेड़ की शाखाओं से गिरोगे, कहां कहां से गिरोगे, अपने आप को जख्मी करोगे, मेरा दिल अभी से तड़प रहा है सोचकर ही क्या होगा, इसलिए मैं आपको मेरी कांति से ढक दूंगी। तो हृदय में राधा रानी का भाव है और बाहर से राधा रानी की कांति है, स्वर्ण कांति। तो गए भी कैसे, राधा रानी की छत्र छाया में ही गए श्री कृष्ण भगवान। उन्हीं का अगर भाव समझना है, उनका ध्यान करना है, उनके रहस्य को समझना है, तो उनके ही क्या कहते हैं ना, आवृत्त, कंप्लीट आवृत्त होकर वो गए। उन्हीं के आवृत्त कृपा के अंदर, एनवेलप के अंदर ही वो उन्होंने 48 साल बिताए। तो राधा रानी है वो, स्वयं दूसरे भेष में आकर अनुभव कर रहे हैं, अद्भुत लीला है वो। लेकिन वो लीला की प्रेरणा कहां से हुई, वो अद्भुत लीला जो है आज तक दुनिया में किसी को समझ में नहीं आती है, आम आदमी को हमारे प्रभुपाद जी की दया से सबको समझ में आ रही है। क्या इतिहास की किताब में लिखा था हमारे चौथी के इतिहास में, कि एक संत बंगाल में हुए चैतन्य महाप्रभु, वो हरिनाम कीर्तन को झूम झूम के नाच नाच के गाते थे, ऐसा इतिहास की किताब में वर्णन है। आप भी समझेंगे ठीक है भाई, तुम्हारा महाराज भी संत है, चैतन्य महाप्रभु भी संत थे वो, और बाकी भी संत है, ये भी एक संत है, लेकिन किसको समझ में आया वो संत नहीं है, स्वयं भगवान है वो। ऐसी विचित्र लीला है उनकी, विचित्र गुप्त लीला है, छन्न अवतार है वो आचार्यों को, आचार्यों की कृपा के बिना वो समझ नहीं सकते। और वो इतनी छन्न लीला जो है इतनी दुर्गम समझने के लिए है, इतनी कठिन समझने के लिए है, इट्स लाइक अ मिस्ट्री ओनली। वो इतना जो दुर्गम लीला है वो करने की प्रेरणा कहां से हुई, वो राधा रानी के नाम से हुई। ऐसे राधा रानी का महात्म्य है, स्वयं कृष्ण जो परात्पर भगवान गोलोकेश्वर लीला पुरुषोत्तम है, वो भी ऐसे ना मेस्मराइज रहते हैं, विभोर अवस्था में रहते हैं, ऐसे कंप्लीटली मेस्मराइज, क्या है ये राधा तत्व, क्या है, खुद का ही शरीर के बाएं अंग का हिस्सा है वो, उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया वो। जैसे कोई पिताजी जन्म देता है किसी को, छोटा से बड़ा कर देता है, उसके बाद में बेटा बड़ा होकर जाकर अनेक अद्भुत कार्य करता है, तो पिता को भी आश्चर्य होता, अरे वाह, आई नेवर इमेजिन्ड कि मेरा पुत्र ऐसे ऐसे कार्य करेगा। तो वो अपने ही क्रिएशन को देखकर आश्चर्यचकित होते रहते हैं। वैसे ही राधा रानी को देखकर श्री कृष्ण हमेशा आश्चर्यचकित रहते हैं, दिग्मूढ़ रहते हैं, अचंभित रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व है जिसके बारे में आज हम उनका आविर्भाव दिवस मनाने जा रहे हैं। ये जो नाम है ना राधा, इसका एक सेकेंड ना, इसका अर्थ जो है वो समझाया है गर्ग मुनि ने, ढूंढना पड़ेगा अभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रार्थना भी कर रहे हो ना कि मिले तुरंत? हाँ मिल गया। तो ये जो गर्ग मुनि है वो बता रहे हैं कि उनको सब लोग पूछ रहे हैं कि राधा रानी का राम का अर्थ क्या है। तो वो रहस्य बता रहे हैं कि एक बार वो गंधमादन पर्वत पर गए बहुत शिष्यों के साथ में, और वहां पर भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने गर्ग मुनि को साम वेद का संदर्भ देते हुए राधा शब्द के नाम का अर्थ बताया। सोच सकते हैं आप, लोकेशन, व्यक्ति, कृष्ण, सामवेद, ऐसे चर्चा हो रही है, बहुत हाई लेवल की चर्चा हो रही है। उसमें उसमें कहते हैं राधा ये चार अक्षरों से बना हुआ है, र आ ध आ। तो र का मतलब है रमा, यानी कि श्री, यानी कि लक्ष्मी देवी, परम लक्ष्मी देवी, और आ यानी गोपियां। आ के बहुत अर्थ हैं, भगवान भी कहते हैं गीता में आकार ओस्मी। जब कोई संगीतकार आ गाता है ना तो वो एक्चुअली कृष्ण को पुकार रहे हैं, आलाप जो है वो कृष्ण के लिए पुकार रहे हैं। तो ध यानी धरा यानी भूदेवी, और आ आखिर का जो है वो विरजा, जो एक दिव्य गोपी है गोलोक वृंदावन की, नदी के रूप में भी विराजमान है, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को अलग करती है। तो श्री लीला यानी गोपियां, गोपियां क्या है, भगवान का लीला विस्तार है, वो भगवान की लीलाओं का विस्तार करते रहती है, इसलिए उनको लीला देवी भी कहा गया है। वृंदा देवी का और एक नाम क्या है, लीला शक्ति, जो लीला को आयोजित करती है, लीला को प्रकाशित करती है अपने प्रभाव से। तो गोपियां जो है वो आ से गोपियों का प्रयोजन है और वो भी लीला से संबंधित है। तो रमा लीला, ध यानी धरा भूमि देवी, और विरजा, ये चार भगवान की पत्नियां हैं, और ये चार पत्नियां गौलोक में निवास करती हैं और गौलोक का रहस्य और शोभा आनंद बढ़ाती है। तो भगवान नारायण गर्ग मुनि को बता रहे हैं कि भगवान का जो अंतिम चरम आभा है वो इन चार पत्नियों के रूप में, देवियों के रूप में प्रकट होता है, लीला भू श्री और विरजा। और ये चारों देवियां जब भगवान से एक बार गौलोक वृंदावन के दिव्य कुंज में मिली तो उसी राधिका के अंदर सम्मिलित हो गई, दे मर्ज्ड इन फ्रंट ऑफ कृष्णा इनटू द पर्सनालिटी ऑफ राधा रानी। इसलिए वो कहते हैं कि ये राधा रानी के नाम का अर्थ है, और राधा रानी इसलिए परिपूर्णतमा है, शी इज दी अल्टीमेट परफेक्शन, क्योंकि गौलोक वृंदावन का जो रहस्य है वो चार देवियों के रूप में प्रकट होता है और वो राधा रानी के अंदर सम्मिलित हो जाता है। इसलिए भगवान नारायण स्वयं बता रहे हैं कि जो राधा रानी का नाम कृष्ण के पहले पुकारता है और उस तरह से राधा कृष्ण के नाम को पुकारता है, वो परम भगवान कृष्ण को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है, और उसके लिए चार पुरुषार्थ तुच्छ हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाले चार पुरुषार्थ जो हैं वो एकदम तुच्छ हो जाते हैं जो राधा रानी का नाम पुकारते हैं। प्रबोधानंद जी सरस्वती महाराज बताते हैं कि जो राधा नाम, यानी हम लोग अलग से राधा रानी का नाम पुकारने की जरूरत नहीं, हमारे महामंत्र में राधा रानी का नाम है। एक बार नहीं, कितनी बार है बताइए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण का नाम कितनी बार है, राम का नाम कितनी बार है, राधा रानी का नाम कितनी बार है, 8 बार। तो हमें राधा राधा करके अलग नाम करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सब लोग भी कल से अभी राधा का मंत्र जपने शुरू करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र इस तरह से बनाया गया है कि राधा रानी की पुकार सम्मिलित है उसके अंदर, केवल हमको पुकारना चाहिए। वो एक साधना कष्ट वाला काम, 16 माला, बाप रे कितने घंटे बीत रहे उसके अंदर, कब मुक्त हो जाऊंगा मैं इस बंधन से, कब माला को माला पर फेंकूंगा और कल तक नहीं ढूंढूंगा, और कल सुबह उठने के बाद माला में माला को ढूंढूंगा, ये भाव से नहीं। वो हरे, वो हरा कृष्ण, हरा कृष्ण नहीं है, वो हरे कृष्ण है। हरे का मतलब क्या है, वो सप्तमी संबोधन है, वो संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से पुकार है, वो पुकार हरे, हम राधा रानी को पुकार रहे हैं, जिससे कृष्ण का ध्यान आकर्षित होता है, फिर वापस हरे, फिर कृष्ण, यानी हर बार राधा रानी को ही पुकार कर भगवान का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को जप कहते हैं। हाँ, जप में सोना, जप में कुछ 4-4 ट्रैक मन में चालू रखना विचारों के, ये जप नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि जप यानी जब हमारा संपूर्ण ध्यान भगवान को पुकारने में और उनके चिंतन में व्यक्त होता है और दुनिया की सारी चकाचौन चीजें तुच्छ नजर आती है, उसी को जप कहते हैं। ऐसे उन्होंने अभी अभी मुझे 2 दिन पहले मैसेज आया था, दोबारा बताता हूं। जप वो जप है जिसमें हम भगवान को पुकारते हैं, राधा रानी को पुकारते हैं, केवल उनका नाम उच्चारण नहीं करते, पुकार रहे हैं हृदय से, और वो पुकारने के पश्चात जब हम विश्व के सारे चकाचौंध इच्छुक चीजों को तुच्छ समझने लगते हैं तो हमारा जप जो है वो सिद्ध हो गया। तो रा जो है उसका भी अर्थ है रा, कि रा का उच्चारण करते ही सारी पीड़ाएं नष्ट हो जाती है, गर्भवास नष्ट हो जाते हैं, आने वाला गर्भवास जो आप अगले जन्म में माता के गर्भ में प्रवेश करोगे, और धा उच्चारण करते ही भगवान भवबंधन मुक्ति दे देते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, ये जो भवबंधन है इसमें से उच्चारण करते ही कृष्ण भगवान मुक्ति दे देते हैं। और एक उसका अर्थ है कि रा उच्चारण करते ही भगवान उस व्यक्ति को भक्ति दे देते हैं, क्योंकि वो राधा रानी के नाम का शुरुआत का अक्षर है। और धा उच्चारण करते ही क्या कहते हैं, धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामी श्रवण लोभतः, सुनने के लिए पागल होकर भागते रहते हैं उस व्यक्ति के पीछे जो उस नाम को पुकार रहे हैं। हरे जब पुकार रहे हैं तो कृष्ण आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, बलराम जी छत्र लेकर आ रहे हैं आपके पीछे, सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा कर रहा है, यह हरे कृष्ण महामंत्र का वास्तविक अर्थ है। जब हम हृदय से पुकारते हैं तो सुदर्शन चक्र हमारे सुरक्षा में हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, बलराम जी छत्र लेकर हमारे पीछे आ रहे हैं, और स्वयं श्री कृष्ण क्या कहते हैं आगे, धा शब्द उच्चारणात पश्चात धावत धावत यैव ससंभ्रम, संभ्रमित भ्रमित होकर कृष्ण भगवान ऐसे भाव विभोर होकर आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, कौन मेरे राधा रानी का नाम ले रहे हैं, जिसके पीछे कृष्ण आ रहे हैं उसको क्या चिंता है, दुनिया में कोई माया नहीं छू सकती उसको, कोई कष्ट नहीं छू सकता है, कष्ट होगा लेकिन छुएगा नहीं उसको, ऐसा ये प्रभाव है। हाँ, और उसी नाम को कृष्ण भगवान जमुना किनारे जो है वो जप कर रहे हैं। एनीवेज, महिमा तो अनंत है, प्रबोधानंद जी कह रहे हैं और राधा सर सुदानिधि में कह रहे हैं कि ब्रह्म नारद शुक इंद्र आदि सभी देवता जो है व्याकुल रहते हैं, लेकिन उनको भी एक कर्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है। वो व्यक्ति जो राधा का नाम पुकारता है वो तम राधिका स्मरणम अहम करोमी, वो राधिका के चरणों के रेणु का स्मरण कर रहा है, तो वो कृष्ण भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं क्योंकि वो राधा रानी के चरणों के रेणुओं का स्मरण कर रहा है। एक मुझे अभी याद आ रही कहानी, वो एक भंगी था, बड़ा अच्छा भक्त था, ब्रजवासी, और वो नंदगांव के लोग कहते हैं कि वो लीला नंदगांव के सीढ़ियों पर हुई, बरसाना के लोग कहते हैं कि वो बरसाना की सीढ़ियों पर हुई, दिस इज क्वाइट नेचुरल, वी एक्सेप्ट इट। बट वो मंदिर की सीढ़ियों को साफ करते करते वृंदावन धाम की महिमा और राधा रानी की महिमा को गायन कर रहा था और आंखों से अश्रु लेकर वो बुहारी कर रहा था, तो उसका भाव इतना उत्कट भाव था, हमें पता होना चाहिए। हाँ, क्या मुझे प्रभु जी सेवा दिया, मैं तो MBBS IIT ग्रेजुएट हूँ, मंदिर में आपने कहा बर्तन मांजो झाड़ू लगाओ, अरे मेरे लायक कुछ सेवा दो, जो जो मैंने पढ़ा है, मैं जो स्किल्स एक्वायर करके आया हूँ, थोड़ा उसके लायक सेवा तो मुझे भी आनंद आ जाए। ये सोचना गलत है, मुझे आनंद आ जाए ये सोचना ही नहीं भक्त को। भगवान को कैसे आनंद मिले, हमारे वरिष्ठ भक्तों को कैसे आनंद मिले, गुरु को कैसे आनंद मिले, उसके लिए कार्य करना है। उसमें हमारे पद और शिक्षा, हमारी डिग्री पदवी का कोई वैल्यू नहीं है, वो सब हमारे क्या कहते हैं ना, वो अनेक प्रकार के टोपियां हैं जिसको पहनकर हम घूम रहे हैं। तो वो भंगी वहां पर झाड़ू लगा रहा है, एक तरह से शूद्र का काम कर रहा है, लेकिन उसका भाव इतना प्रभावी था कि राधा कृष्ण उसी के ऊपर पेड़ की डाल पर प्रकट हो गए। ऊपर उसको पता नहीं है, नीचे झाड़ू लगा रहे हैं और गीत गाते हुए राधा रानी को पुकारते हुए रोते होते मंदिर की सीढ़ियों को बुहारी कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, राधा रानी प्रकट हो गए, आप सोच सकते हैं, छाखा पर ऐसे पैर उनके हिला रहे हैं ऐसे। कृष्ण भगवान ने हरे रंग का अंगरखा पहना है और राधा रानी ने भी शॉल पहनी हुई है, वो उनके बाबा ने दिए उनको राधा रानी को, और इनके बाबा ने उनको हरे रंग का अंगरखा दिया है। तो राधा रानी बोल रही है, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी ने ये मंत्र नहीं बोला था, मैंने किसी अलग कारण से बोला। तो राधा रानी कृष्ण भगवान को बोल रही है, देखो कितना अच्छा भक्त है, इस पर कृपा करनी चाहिए आपको। तो कहो आपकी बात सही है, क्या कृपा करूं, वो आपका जो अंगरखा है उसको दे दो उसके ऊपर। तो कृष्ण भगवान कहते, नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे दूंगा, मेरे बाबा ने दिया है, वो भी सुबह पहनते हुए पहनकर भेजा है मुझे, वापस जाऊंगा बिना अंगरखा का तो बाबा पूछेंगे अंगरखा किधर गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो राधा रानी कहते, ऐसे कैसे आप इतने अंगरखे से आ सकते हो, इतना प्रेम से भक्त आपका नाम पुकार रहा है, इतनी सेवा कर रहे हैं भाव से, वो कृपा करनी चाहिए, ऐसे आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए, दे दो आपका अंगरखा उतार के। कृष्ण भगवान फिर भी मना कर देते हैं। राधा रानी कहते, चलो मत दो आप, मैं मेरी शाल देती हूँ, मेरे पिताजी मुझे नहीं बोलेंगे, मैं दूंगी तो मैं बताऊंगी उनको मैंने किसको दी उसको। तो राधा रानी अपनी शॉल निकालती है और नीचे डाल देती है, और वो उसके ऊपर से उसके शरीर पर गिर जाती है, और जैसे ही वो गिरती है वैसे वो कांपने लगता है, ऐसे भाव से बेहोश होकर गिर जाता है वहां पर, प्रेम अतिरेक भाव से गदगद होकर आंखों से अश्रुओं की धारा बहते हुए वो गिर जाता है। इतनी कथा है, ज्यादा बड़ी कथा नहीं, दिस इज सॉरी एंड सियर। बट वो क्या, उस शॉल जो राधा रानी पहनती है उसका क्या महात्म्य है। वो कहते हैं कि राधा रानी जब भी कहीं खड़ी होती है पहाड़ पर या कहीं नदी किनारे, तो वायु जो है ना बड़े प्रेम से आता है वहां से, वायुदेव अपनी लहरों को लेकर, हाँ, यमुना जी के पुके सर ठंडी ठंडी बाष्प को लेकर मंद मंद कहते हुए आता है और उनकी शाल को ऐसे उड़ाता है, और शाल ऐसे ऐसे दुपट्टा चुनरी ऐसे आकाश में फैरती है। तो संत लोग क्या बताते हैं, प्रबोधानंद जी क्या लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो हवा है वो आप जरा अच्छी तरह से विचार कीजिए, ध्यान पूर्वक, वो जो हवा जिस दिशा से आ रही है और उस राधा रानी के शॉल को स्पर्श करते हुए परावर्तित होकर एक दिशा से आ रही है, रिफ्लेक्टेड क्या कहते हैं वायु लहर, वो जिस दिशा से परावर्तित होकर वो वायु की लहर आ रही है उस दिशा को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रबोधानंद जी लिखते हैं। वायु की लहर को नहीं, चुनरी को भी नहीं, राधा रानी को भी नहीं, वो तो फोर्थ स्टेज हो गया, फर्स्ट वो दिशा, उसके बाद में वायु की लहर, उसके बाद में वो शॉल, उसके बाद राधा रानी। तो भक्त लोग कह रहे हैं, प्रबोधानंद जी कह रहे हैं उस दिशा को हम प्रणाम करते हैं। हाँ, यस्याति वसनांत खेलनोत्थ, कह रहे कि वो जो वसन जो है, वसन मनी वस्त्र, उसको लगकर जो हवा आ रही है उस दिशा को हम प्रणाम करते हैं। इतना राधा रानी का महात्म्य है और इतनी कृपा है उनकी, अपने भक्त पर कृपा करने के लिए वो कभी कचरती नहीं है, कभी संकोच नहीं करते। तो ऐसे राधा रानी का हम आज जन्मदिन मना रहे हैं। भगवान की वो बहिरंगा शक्ति है और लीलाएं तो बहुत सुंदर सुंदर हैं, लेकिन उसमें एक सावधानी बरतना चाहिए लीलाओं को सुनने के पहले, क्योंकि हो सकता है हमारी जो मन की जो चेतना की अवस्था है, दुनियादारी का प्रभाव में हम जीते हैं, यहाँ पर हमारा व्यवहार भी वो थोड़ा सा दूषित हो जाता है। और कॉन्शियसनेस गेट्स कंटेमिनेटेड बाय द वर्ल्डली एटमॉस्फेयर। तो उसमें जब ये भगवान की और आदरणीय की लीला सुनते हैं तो एक मनोरंजन के स्तर पर उसको हम एंजॉय कर सकते हैं, और एक बड़ा बहुत बड़ा डेंजर है वो कि अगर हम मनोरंजन के स्तर पर उसको एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं कि भगवान की इन लीलाओं को हमें बड़े आदर पूर्वक भाव से सुनना चाहिए, विथ ऑ एंड रेवरेंस। एक हमें सम्मान मिल रहा है भगवान के अंदरूनी अंतरंग लीलाओं को श्रवण करने का। जैसे किसी के प्रधानमंत्री के पत्नी के साथ में उसका क्या संबंध है उसके बारे में सुनने को मिलना, मतलब हमारी थोड़ी योग्यता है उसके बारे में, लेकिन कोई सोर्स से हमको मालूम पड़ रहा है कि ऐसे ऐसे उनके प्रेम के संबंध है। तो वैसे ये भगवान है स्वयं, कोई भी पति पत्नी अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में पब्लिक में चर्चा नहीं करते, उनके अंदर ही सीमित रहता है। एक दुनिया के पति पत्नी की बात कर रहा हूं मैं, हमारा हमारी पत्नी का हमारे साथ में क्या भावनिक कनेक्शन है वो हम किसी को बताते नहीं, बता ही सकते नहीं, क्योंकि वो ऐसा विषय ऐसा है, श्रृंगार रस ऐसा विषय ऐसा है कि वो वात्सल्य रस वाले लोगों को भी बता सकते नहीं है और साख्य रस वाले दोस्तों को भी नहीं बता सकते, ऐसा विषय है वो। और वो चीजें आचार्यों की कृपा से हम जैसे सामान्य लोगों के बीच में प्रकाशित हो रही है, तो एक तो होगा कुतूहल, हर क्या है, क्या है बताओ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उनके अंतपुर में, क्या हो रहा है, तो एक कुतूहल है हमारा, वो हम उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, वो भी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन है, कुतूहल की पूर्ति। और कुतूहल की पूर्ति हो गई फिर वो क्या हो रहा है उसका एंजॉय कर रहे हैं, हाँ अरे अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, ओ वाओ आए मैंने विचार नहीं किया था ऐसे हो सकता है, तो मनोरंजन हो सकता है। लेकिन जो तीसरी स्थिति है कि हमारा परम भाग्य है, क्या योग्यता है हमारी उसको सुनने के लिए, तो एक सम्मान हमारा हो रहा है जिसको हमें कृष्ण भगवान की लीलाओं का प्रकाशन हमारे सामने हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने भी जब दशम स्कंध लिखा वो बहुत बड़ा रिस्क लिया, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कोई कृष्ण लीला सुनने के पश्चात लोगों का जीवन का उद्धार हो सकता है, इसलिए वो योग्यता ना होते हुए भी मैं दूंगा उनको, जो भी जिसको भी उसका स्पर्श होगा ठीक तरह से वो तो उद्धार हो जाएगा, बाकी तो देखा जाएगा क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन। उसी प्रकार से हमें भी राधा रानी और कृष्ण भगवान के और नाम का महात्म्य, लीला महात्म्य सुनने को मिल रहा है, लेकिन हमारी चेतना को हमको एडजस्ट करना चाहिए, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आत्मशुद्धि का विषय है, यह आत्म उन्नति का विषय है, इसे उसी प्रकार से सुनना चाहिए। अपनी योग्यता होकर हम वो लीला में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, केवल दूर से देखना चाहिए, सुनने के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, क्योंकि ये विषय बहुत जैसे ना कहते हैं शेरनी का दूध है, ये कभी सुना है आपने इस बात को, शेरनी का दूध है ना वो केवल सोने के पात्र में उतार सकते हैं, और किसी पात्र में उसको उतारेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, पात्र ही नष्ट हो जाएगा। हो सकता है ये संकल्पना है काव्यात्मक, हो सकता है ये सत्य है, दोनों तरफ से ये इंपॉर्टेंट समझना है कि शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में उतर सकता है और पीने के लिए हर रूप व्यक्ति उसको हजम नहीं कर सकता है, वो मर जाएगा वो अगर वो शेरनी का दूध पिएगा। तो ये जो राधा रानी और कृष्ण का विषय है ये शेरनी के दूध जैसा है, तो हमें उसको आदर भाव से, सम्मान भाव से उसको श्रवण करना चाहिए। मैं भी उसमें से एक हूं और हंस रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, इस भाव से उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, ये हमारे आचार्यों का आदेश है। तो अभी हम राधा रानी के परिवार का परिचय कराएंगे, क्योंकि हम सबको उनके धाम में जाना है एक दिन। जैसे किसी बहू को विवाह करके अपने ससुराल जाना है, समझो वो विवाह होने वाला है, तो विवाह के पहले क्या होता है, अभी विवाह नहीं हुआ है, अभी तक केवल सगाई हुई है, तो सगाई से विवाह तक क्या होता है, वो परिचय किया जाता है, अरे ये मेरी मम्मी है, ये तुम्हारी सासू होगी, ये मेरी सिस्टर है, तुम्हारी ननद होगी, ये मेरी मौसी है, ये मेरी चाचा है, ये मेरे बड़े भाई है, मेरे छोटे भाई है, ये उनकी पत्नियां है, उनके बच्चे हैं। तो बहुत देर तक तो वो नई बहू जो है वो इतना डेटा जो है ना अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर रही है, भाई बाप रे किसका बेटा कौन है पता नहीं चल रहा है, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा जब मैं जाऊंगी घर पे, लेकिन वो प्राथमिक परिचय तो करा रही है ना, कम से कम सासू को मौसी नहीं बोलेगी, कम से कम इतना तो वो मेन लोगों का जो है वो ध्यान रखेगी, ये ससुर जी है, ये सासू जी है, ये मेरे पति के भाई और बहन है, इतना तो उसको कम से कम पता होना चाहिए, या तो घर दादर में है या तो मेरा रोड में है, इतना गफलत नहीं करेगी वो। तो वैसे हमको जब भगवान के धाम में जाना है तो इस जीवन में यहाँ रहते हुए प्रयास करना है, कि जिस परिवार में हमको जाना है उनका भी परिचय होना चाहिए। तो एक कंज भानु महाराज थे, कंज भानु महाराज के पुत्र थे मही भानु, और उनका विवाह सुखदा देवी से होता है। ये राधा रानी की दादी है और दादाजी है। कंज भानु जी परदादा हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो मही भानु और सुखदा का विवाह होता है तो उनको 9 पुत्र होते हैं। प्रथम पुत्र का नाम है महाभानु, दूसरे पुत्र का नाम है सत्य भानु, तीसरे पुत्र का नाम है गुण भानु, चौथे पुत्र का नाम है धर्म भानु। वे सब भानु भानु क्यों है? क्योंकि ये सूर्य वंश से हैं, सूर्य का एक नाम है भानु। और ये सब लोग सूर्य के अंशावतार हैं। वृषभानु महाराज भी सूर्य के अवतार है, और उसके बाद आते हैं वृषभानु बीच में 5वें नंबर के, और फिर रुचि भानु, फिर वर भानु, फिर सुभानु और रति भानु। ये 8 भाई और एक 9वे वृषभानु महाराज जी। वृषभानु महाराज को 2 बहनें भी हैं, एक का नाम भानुमती है, एक का नाम भानुमुद्रा है। वृषभानु महाराज का विवाह नंद महाराज ने उसका सगाई किया था कीर्ति मैया से। और कीर्ति मैया का वो उद्गम कहाँ से हुआ? एक इंदुसेन नाम के गोप थे, ये बसती नाम के गांव में रहते थे। वो कहाँ पर है पता है आपको? बसती नाम का गांव जो है वो राधाकुंड से 1 किलोमीटर अंदर है, वृंदावन के रास्ते पर है। उसको बोर्ड लिखा है बोसोती, बोसोती बंगाली में, तो उसका नाम है वसती, जहाँ पर वृषभानु महाराज का तंबू गिरा था, मतलब रखा गया था, जब वो रावल से बरसाना में वापस जा रहे थे। कृष्ण भगवान गोकुल से नंदगांव की ओर जा रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी लॉजिकल है कि नंद महाराज का तंबू था, उन्होंने लगाया था छठिकरा में, और वृषभानु महाराज का तंबू लगाया था वसती में। क्यों? नॉन प्लेस ना, अपने सासू जी का प्लेस है ना वो। तो वहां पर इंदुसेन नाम के गोप हुए, उनका विवाह हुआ मुखाराई देवी से। उस गांव का और एक दूसरा नाम है, बाजू में एक गांव है उसका नाम है मुखारा। तो वहां पर मुखाराई यानी राधा रानी की नानी का जन्म हुआ। और इंदुसेन मुखारा देवी का जन्म विवाह होने के पश्चात उन्हें 4 एक है कीर्तिदा देवी, दूसरी है भद्रकीर्ति, तीसरे है महाकीर्ति और चौथी है चंद्रकीर्ति। ये 4 देवियां वहां जन्म प्राप्त हुए। और मुखारा देवी की बहन का नाम यानी कृष्ण राधा रानी के मौसी का नाम है कीर्तिमती, कीर्तिमती। तो वृषभानु का विवाह कीर्तिदा से हुआ और उनको कितने संतान हुए? राधा रानी को कितने सिबलिंग्स हैं? बड़े भाई श्रीदामा है, बीच में राधा रानी है, और छोटी बहन कौन है? अनंग मंजरी। बलराम जी की कथा में सुनते हैं ना आप लोग सब लोग, जब बलराम जी श्रृंगार रस में कौन से रूप में प्रकट हुए? अनंग मंजरी के रूप में प्रकट हुए। और ये ललिता देवी की प्रधान अनुयायी हैं, 1 करोड़ गोपियां हैं उनके साथ, उनके युद्ध में। तो मही भानु जी का विवाह है वो चंपा देवी से हुआ। उनका एक नाम अशोक महागोप भी है, और चंपा देवी का और एक नाम शारदा देवी भी है। और उनको कौन प्राप्त हुई? ललिता देवी उच्च ग्राम में। सत्य भानु का विवाह नवयौवनी देवी से हुआ, और उनका गांव है आंजनोक, और उसमें विशाखा देवी का जन्म हुआ। गुण भानु का विवाह सुमिता देवी से हुआ और उनको प्राप्त हुई चंपकलता, उनका गांव है करहला, करहपुर संस्कृत नाम है, लोकल नाम करहला। धर्म भानु जो है वो उनका विवाह सुभगा देवी से हुआ और उनको प्राप्त हुई चित्रलेखा देवी, चित्रा सखी, जो चिकित्सपुर यानी चिकसौली इस गांव में निवास है उनका। उसके बाद वृषभानु महाराज, उनका विवाह कीर्ति से हुआ। रुचि भानु का विवाह भामा देवी से हुआ और उनको कन्या की प्राप्ति हुई तुंग विद्या देवी। तुंग विद्या है कामना वन, उनका गांव है, कमई कहते हैं उसको आज के नाम। वर भानु का विवाह रमा देवी से हुआ और रंकपुर वन यानी रांकोली आज की तारीख में उस गांव में उनका राज्य है, और उनको जन्म हुआ इंदुलेखा देवी का। सब नाम परिचित है आपको, इंदुलेखा। फिर 7वें जो 8वें नंबर के सुभानु, उनका मालिका देवी से विवाह हुआ और रंग देवी उनको प्राप्त हुई कन्या के रूप में। उनका नाम क्या है? डबरा रो, यानी डबारा आज की तारीख में। और आखिरी भाई जो है रति भानु, उनका विवाह हुआ बुद्धमती देवी से और उनको प्राप्त हुआ प्राप्त हुई सुदेवी। उनका गांव किधर है? सुनहरा, स्वर्णपुर। ऐसे इनका परिवार का परिचय है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये आठ भाई आठ गांव में रहे। बरसाना वो कमल के बीच का जो हिस्सा है ना, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ल, वर्ल ऑफ द लोटस कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं उसको। तो वो जो स्थान है वो बरसाना है, इसके बीच में राजा रानी का राज्य है। ऋषभानु महाराज रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, दो पुत्रों, तीन पुत्रों, तीन संतानों के साथ। और उसके चारों तरफ ये आठ गांव हैं, जैसे प्रधान आठ कमल की पंखुड़ियां जो होती है, उस प्रकार से ये आठ गांव हैं। और इनको एक एक कन्या जो हुई वो राधा रानी के अष्ट सखी के रूप में प्रसिद्ध हुए सब लोग, और सभी लीला में सम्मिलित हैं। इनको परम श्रेष्ठ सखियां कहा गया है। इनका भी सखियों का जो है ना बहुत सारा वर्गीकरण है। सबसे नीचे जो है वो, सबसे नीचे कोई होता नहीं है, यहाँ पर सबका हिसाब उल्टा होता है। जो सबसे नीचे होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, वो सबसे पहले भगवान उनको देखते हैं, तो उसको कहते हैं किंकरी। वो केवल एक ही प्रश्न पूछते रहते हैं, क्या किम कर रहा, किम कर रहा, ऑल टाइम ओनली आस्किंग हाउ कैन आई सर्व यू बेस्ट। तो उसके बाद में दासी, उसके बाद में मंजरी, उसके बाद में सहचरी, उसके बाद में सखी, और सखी के बाद में सखी के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परमेष्ट सखी। हाँ, तो करोड़ों गोपियां हैं उसमें, 16,000 गोपियां बहुत प्रिय है भगवान को, उसमें 108 गोपियां सबसे उससे भी अधिक प्रिय है, उसमें 8 गोपियां भगवान को अधिक प्रिय हैं, और उस 8 में 2 ज्यादा सबसे प्रिय हैं, वो है चंद्रावली और राधा रानी। और राधा रानी की 8 सखियां वो परमेश सखी में आती हैं। तो सखी में आप कुछ नाम बता सकते हो, आपने सुने होंगे नाम कभी। सखी में कुसुमिका, विंध्या, धनिष्ठा, इसके लीलाएं बहुत आती हैं। नित्य सखी में कस्तूरी मंजरी, मणि मंजरी, ये नित्य सखियाँ हैं। प्राण सखी में वसंती, लासिका, शशिमुखी, ये गोपियाँ हैं। प्रिय सखी में कुरंगाक्षी देवी, मंजुकेशी देवी, माधवी देवी, मालती देवी, ये पर प्रिय सखियाँ हैं। और परमेश सखिया में ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, चित्रा, तुंगविद्या, सुदेवी, रंगदेवी। कैसे याद रखेंगे उसको आप? याद करना चाहेंगे आप उसको? अरे चैतन्य महाप्रभु उनका नाम जप करते थे तब सारे विद्यार्थी दंडा लेके भागे उनके पीछे। ये क्या सिखा रहे हैं आप हमको? बताते हो कृष्ण का नाम लो और आप वो औरतों का नाम लेते हो सन्यासी, मतलब ये सही नहीं है। और डंडा लेके मतलब उनको चिढ़ाया तो भगवान क्रोधित हो गए और भाव में डंडा लेकर उनको मारने के लिए भागे। उसके बाद में उन्होंने सन्यास लेने का निर्णय लिया है। यानी कि जब राधा रानी का भाव लेकर स्वयं कृष्ण अवतरित हुए तो इन सखियों का नाम जपते थे ये, इसलिए मैं यहाँ पर आपकी तरह सामने ये नामों को ले रहा हूँ मेरी शुद्धि के लिए। एक बार और लेते हैं। हाँ, कुसुमिका, विंध्या, धनिष्ठा, कस्तूरी, मणिमंजरी, शशिमुखी, वसंती, मालती, कुरंगाक्षी, मंजुकेशी, माधवी, मालती, ललिता, विशाखा। अभी इनको याद करने का तरीका बताता हूँ। आप देखिए सामने राधा वृंदावन चंद्र खड़े ना, तो राधा रानी के साइड में विशाखा आएगी, विशाखा के बाजू में और एक खा आएगी, क्या आएगी? इंदुलेखा। याद करने के लिए आसान हो गया ना, विशाखा, इंदुलेखा। कृष्ण के राइट साइड में कौन आएगी? ललिता। उसके बाद और एक ता आएगी उसके बाजू में, चंपकलता। ललिता, चंपकलता, दिस इज द वे आई रिमेम्बर, दिस व्हाई आई टोल्ड यू। और इधर लेफ्ट साइड में इंदुलेखा के बाजू में दो देवी आएंगी, रंगदेवी, सुदेवी, ट्विंस। और इस साइड में दो बचे हैं, तुंगविद्या और चित्रलेखा। पहले चित्रलेखा आएगी, इसके बाद में तुंगविद्या आएगी। राधा, वृंदावन चंद्र, ललिता, चंपकलता, चित्रा, तुंगविद्या, विशाखा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, सुदेवी। ओके, अभी इन सब लोगों का जन्म जो है ना वो भी एक बहुत रहस्यमय है, वो भी एक लाइन से आता है। हाँ, देखो, भाद्रपद शुद्धम पक्ष चल रहा है, उसकी तृतीया के दिन सबसे पहले तुंगविद्या का जन्म होता है। उसके बाद षष्ठी को किसका जन्म होता है? ललिता षष्ठी, ललिता देवी का जन्म होता है। अटोर पर्वत पर अशोक महागोप और शारदा देवी के माता पिता के रूप में उनका जन्म होता है। फिर षष्ठी के बाद में कुछ लोग कहते हैं सप्तमी को विशाखा का जन्म होता है, लेकिन कई जगह पर लिखा है अष्टमी के दिन ही उनका जन्म होता है। तो ये कल्प भेद से दोनों ही सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सप्तमी को या अष्टमी के दिन विशाखा का जन्म होता है, और अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म होता है, और साथ साथ और जन्म किसका होता है, चंपक लता देवी का जन्म भी इसी दिन होता है, तो उसके बारे में बताएंगे आपको। और दशमी के दिन चित्रा सखी का जन्म होता है, भाद्रपद शुद्ध दशमी। आज कौन सी तिथि है, अष्टमी। तो परसों के दिन चित्रा सखी का जन्मदिन है। एकादशी के दिन किसका जन्म है, इंदुलेखा देवी का। और द्वा पूर्णिमा के दिन ट्विंस नहीं, वो दो महागोपों को एक एक कन्या उसी दिन प्राप्त हुई है, पूर्णिमा के दिन रंग देवी और सुदेवी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी मैं आज के क्लास को आरंभ करूंगा। वो बरसाने का इतिहास बताना चाहूंगा आपको कि अभी परिवार का परिचय दिया, अभी परिवार कहाँ रहते हैं उसका परिचय देना जरूरी ना। तो आप जाएंगे एड्रेस पूछते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे कहाँ एड्रेस है उनका। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ और हमारे ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, उस दिन वो भ्रमित थे अंधकार में, भगवान ने चतुष्लोकी भागवत उनके हृदय में प्रकाशित किया, उसके बाद पूर्ण ज्ञानी हो गई वो, क्या कहते हैं उसको, रियलाइज सोल, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया उन्होंने, सब कुछ जान लिया, उनका पर्पस, खुद का जीवन का उद्देश्य, खुद की सेवा की परिपूर्णता, जिनको निर्माण करने जा रहे हैं उनकी सेवा की परिपूर्णता, उनका लक्ष्य जीवन का, उनका वर्तमान की स्थिति कैसी है, सब जान लिया उन्होंने। और बहुत दुख हुआ उनको, अरे बाप रे, जिन लोगों को मैं निर्माण करने जा रहा हूँ वो तो इतने तड़पने वाले हैं यहाँ पर इस दुनिया में। तो आप सोचिए, हमारे जो सर्वप्रथम आचार्य हैं ब्रह्मा जी, जन्म होते ही प्रथम ज्ञान प्राप्त करते ही उन्होंने अपने जीवन के प्रयोजन के बारे में नहीं सोचा कि मेरी परिपूर्णता किसमें होगी, जिनको निर्माण करने जा रहा हूं उनके विषय में उनको अनुकंपा निर्माण हो गई मन में, करुणा निर्माण हो गई, और उनके स्थिति को, आने वाले स्थिति को देखकर दुखी हो गए वो। और उन्होंने 60,000 साल अपने जीवन के पहले सत्ययुग के पहले 60,000 साल कठोर तपस्या की कृष्ण की प्राप्ति के लिए, लेकिन कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया उनको। फिर वो 17,28,000 साल का सत्ययुग होता है, उसमें 60,000 साल गए, कितने बचे, थोड़ा जगह रहने के लिए अच्छा है ये कैलकुलेशन करना, कितने बचे बताइए, 16 लाख, कितने इंजीनियर लोग बैठे, आईआईटी एनआईटी, प्रभु जी क्या कर रहे हैं आप, इतना दुनिया भर आप जा रहे हो प्रचार करने के लिए, 17,28,000 से आपको 60,000 कट नहीं कर सकते आप, ये तो ऑड नंबर बोल रहा है आईआईटी इंजीनियर, इवन नंबर भी नहीं बोल रहे, बताओ 16,68,000 इतने बचे। तो उन्होंने अपना सेवा शुरू कर दिया, और जब आखिरी 60,000 बचे, मतलब 16,08,000 साल उन्होंने अपना सेवा किया, उसके बाद जब आखिरी 60,000 वर्ष आए, दोबारा तपस्या में बैठे वो, और 60,000 साल तपस्या किया उन्होंने, 1,20,000 साल तपस्या किया पहले सत्ययुग में, उसके अंत में भगवान प्रकट हो गए, और क्या चाहते हो आप, वो कहते हैं कि आपके चरणों की धूल चाहते हैं, बोले जाओ ब्रज में, वो कहते हैं ब्रज तो बहुत बड़ा है कहाँ जाऊं, तो इसका एक सुंदर श्लोक है मैं बताता हूं आपको, वृषभानुपुरम गत्वा पुराकृत युगस्यन्ते ब्रह्मणा प्रार्थतो हरि। पुराकृत युगस्यन्ते मतलब पुराकृत यानी सत्ययुग, पुराकृत कृतयुग मतलब सत्ययुग, पुराकृत युगस्यन्ते ब्रह्मणा प्रार्थितो हरि, ममोपरि सदा त्वम ही रास क्रीडाम करिष्यसि, मेरे ऊपर आप अपनी लीलाओं को संपन्न करो। तो भगवान ने उनको कहा वृषभानुपुरम गत्वा, तो वो बरसाने में आए और उन्होंने वहां पर पर्वत धारण किया। देखिए हमारे
संप्रदाय के आचार्य हैं, नंबर वन आचार्य हैं। आप जानते हैं पत्थर होने का मतलब क्या होता है? पत्थर होने का मतलब एक तो निश्चल होना, आप आगे चल नहीं सकते हैं, एक ही जगह खड़े रहना है आपको। पत्थर में भी जान होती है हाँ, लेकिन चेतना बहुत नगण्य होती है। ऊपर उसके ऊपर सब लोग चलेंगे अपने हाँ, निवड़ूंग चरण कमल लेके, काटेरी चरण लेके जाएंगे उसके ऊपर, पापी चरण लेकर जाएंगे, फिर कुत्ता बिल्ली भी चढ़ेंगे, बंदर भी चढ़ेंगे हाँ, ऊपर से टट्टी पेशाब भी करेंगे उसके ऊपर, थूकेंगे भी, क्या क्या करेंगे उसके ऊपर। इतना स्वच्छ पोजिशन उन्होंने स्वीकार किया राधा कृष्ण के और ग्वाल बालों के चरणों की रज को स्वीकार करने के लिए। देखिए हम लोग तपस्या करते किसके लिए करते हैं? ताकि ये पोजीशन से ये पोजीशन में चले जाएं, है ना। आप सोचिए आपका हमारा जो भी हम एग्जाम देते हैं वो टीवी देखते नहीं एग्जाम के टाइम पे, फिर व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, हमारी तपस्या है बड़ी, वो बहुत बड़ी तपस्या व्हाट्सएप बंद करना, क्या बताएं आपको। लेकिन हम करते किसके लिए कि अभी बंद करेंगे तो आगे जाकर बहुत व्हाट्सएप देख सकते हैं, एग्जाम होने के बाद जब एडमिशन मिलेगा तो टाइम ही टाइम है उसके बाद में, सोचते हैं। तो हमारी हर तपस्या जो है एक निम्न स्तर से उसके ऊपर वाले स्तर पे जाने के लिए होती है, लेकिन हमारे आचार्य ऑलरेडी टॉप मोस्ट पोजीशन पे है और तपस्या कर रहे हैं पत्थर बनने के लिए। ये विपरीत तपस्या है। उद्धव जी महाराज ने भी तपस्या की है, भगवान के इतने निकट थे वो, इतने निकट, हर तरह से निकट थे वो, उन्होंने तृण का पत्ता बनने के लिए तपस्या किया है। इमेजिन, ऐसे कोई तपस्या आज तक किसी ने किया नहीं है, उल्टे मार्ग वाली तपस्या, उच्च स्तर से निम्न स्तर के लिए तपस्या। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो सर्वश्रेष्ठ तपस्या होती है, तृणादपि सुनिचे न तरोरिव सहिष्णुना। इसके हमारी ब्रह्मा जी उदाहरण है। तो पत्थर बने चार मुख वाले हाँ, भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़। और कहते हैं कि जब भगवान और राधा रानी और ग्वाल बाल उन पर चलते थे ना, तो वो कदम रखते ही एक तो भाव विभोर होते थे, और भाव विभोर होने की वजह से मक्खन की तरह मुलायम होकर पिघलते थे वो। आपको लग रहा है कि भगवान के सुंदर कोमलोत्तम चरण कमल इससे कठिन पर्वत पहाड़ पर शिलाओं पर रखने वाले कितना दर्द होगा उनको, ये सोचकर गोपियां रोती थी। लेकिन ऐसे नहीं है, पूर्णमासी देवी ने यशोदा देवी को समझाया एक दिन, ऐसा नहीं है, आप निश्चिंत रहो, जब भगवान पैर रखते हैं तो पत्थर जो है वो मुलायम मक्खन की तरह बन जाती है। चलो मैं आपको इस कहानी बताता हूं। एक दिन कृष्ण भगवान जब गाय चराने जा रहे थे तो मैया ने उनको दो जूते दिए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो आप जानते हो सब गायों को भी जूते होने चाहिए। तो कहते गायों के पैर तो सख्त है, उनको तकलीफ नहीं होती, आपके तो एकदम कोमल लाल रंग के तलवे हैं, इनको मैं जब उंगली भी लगाती हूँ तो लाल हो जाते हैं, तो इतने कठिन कठिन पत्थरों पर, कांटों पर, शिलाओं पर, पहाड़ों पर खेलते हो तो कितना कष्ट होगा, ये सोचकर हमको यहाँ पर सुकून नहीं होता है। वी फील सो अनकम्फर्टेबल एट होम थिंकिंग कि कृष्णा भी कहाँ पैर रखते होंगे, तो ये सोचकर मैं आपको दे रही हूँ। तो कहते नहीं नहीं मुझे पूर्णमासी देवी ने बताया था कि वृंदावन धाम वृंदा देवी का हृदय है, हार्ट ऑफ वृंदा देवी, तो मैं कैसे जूता पहनकर वृंदा देवी के छाती पर चल सकता हूँ। तो बोले अच्छा मैं पूर्णमासी देवी को पूछती हूँ। तो पूर्णमासी देवी को पूछने गई वो, क्या आपने ऐसे कहा था क्या उसको? बोले हाँ बिल्कुल कहा मैंने, लेकिन वो तो उनको समझाने के लिए कारण था, लेकिन तुम्हें बताने के लिए दो कारण है मेरे पास। डोंट वरी कि जब भी वो चलते हैं तो पृथ्वी भी मुलायम हो जाती है, और कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान चलते हैं तो उसी से पृथ्वी को शक्ति, ओज, तेज, आभा प्राप्त होती है, और उसी से घास आती है, उसी से पेड़ आते हैं, पौधे आते हैं, फल फूल उत्पन्न होते हैं, सारा जीवन चराने का साधन है वो उत्पन्न होता है जब कृष्ण अपने दिव्य चरण कमल पृथ्वी पर रखकर चलते हैं। इसलिए कभी भी उनको जूता मत पहनाना, वृंदावन धाम का अस्तित्व सस्टेनेंस खत्म हो जाएगा पूरा। और बोलो ठीक है समझ में आया मुझे, लेकिन वो पत्थर का क्या? पत्थर की चिंता मत करना, उसके दो कारण है, आपको जूता पहनने की जरूरत नहीं है, दो कारण है उसके। एक कारण ये है कि जैसे ही ये पत्थर पे पांव रखते हैं पत्थर मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है, और दूसरा कारण है जब भी मुरली बजाते हैं तो अपने आप सारे पत्थर पिघलने लगते हैं। ये तो यहाँ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, सब पिघलते हैं। तो यशोदा माई बड़े अचंभित हो गए सुनकर, ये अद्भुत बात उन्होंने पहली बार सुनी। तो वो खुद वन में गई और कृष्ण के पीछे पीछे गई, और जहां जहां कदम रखा पूरे आगे जाने के बाद में चरण के चिन्ह को स्पर्श किया, वो चरण चिन्ह लाल रंग के हो गए थे। उन्होंने कहा कि लाल रंग कहां से आ गए, मैं तो कुमकुम लगाती नहीं हूं। बाद में पता चला कि गोपियां उनको विदा करते समय कुमकुम का लेप करती हैं। तो आप कहेंगे सुबह तो स्नान कराती हूं मैं, तो धोना साफ होना चाहिए। श्रृंगार रस में लगाया हुआ कुमकुम वात्सल्य रस के स्थान में नहीं धुल सकता। दिस इज वेरी डीप डीप स्टेटमेंट। तो वो जो चंद कुमकुम लगा हुआ है वो भगवान की इच्छा से पृथ्वी जो श्रृंगार रस में उनके साथ में उसके ऊपर प्रकट हो जाता है। तो आश्चर्यचकित हो गई, उन्होंने उसको स्पर्श किया और स्पर्श करके जो सूंघा उसको इतना दिव्य आनंद प्राप्त हुआ यशोदा देवी को। उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं कभी भी उसको जूता पहनने के लिए जिद नहीं करूंगी। ये सब मैं कहां बता रहा था आपको, कहां से कहानी शुरू हुई बताइए। ब्रह्मा जी, तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है वो व्याकुल हो रहे हैं और भानुगढ़ के ऊपर विश्वानु महाराज अपना महल बनाया, अपना परिवार को बसाया। दानगढ़ के ऊपर भगवान ने प्रेम दान मांगा राधा रानी से, रति दान मांगा, भिक्षुक बनकर याचना किया। और विलासगढ़ में विलास लीलाएं बनाई, झूला, बहुत सारे आनंद बनाया। और मानगढ़ में राधा रानी ने मान किया। समय मिलेगा तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसको अंत में रखा है मैंने। तो ये हुआ एक इतिहास। दूसरा इतिहास ये है कि तीन महासतियां हुई जो वैकुंठ में थी। तो एक बार वो विष्णु का दर्शन करने गई, तो वो उधर चार कुमार थे, ये बेचारे सब जगह रहते हैं। उनका पता है इतिहास क्या है, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ ना, तो उसके बाद नारद जी का जन्म हुआ, उसके बाद शिव जी का जन्म होने के पहले इनका जन्म हुआ है। जस्ट इमेजिन हाउ सीनियर दे आर। लेकिन अपने योग बल से उन्होंने चार साल का ही शरीर बना के रखा है और नंगे घूमते हैं, तो किसी को भी अगर दिखेंगे तो लगेगा कि हाँ बालक है, खेल रहे, अपने क्या उसमें। तो तीन महासतियां द्वार पर गई वैकुंठ के, उन्होंने इन चारों को प्रणाम नहीं किया, जानपूर्वक नहीं, ऐसे ही ध्यान विष्णु पर था। तो उनको शाप प्राप्त हुआ कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और जन्म लेना होगा। अभी उनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, हम लोग इतना क्या दुख है, हम तो रहते इधर, क्या प्रॉब्लम है, सोचिए आप इस बारे में। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मिराड रूम मत जाना, वहां पानी नहीं है, बहुत मच्छर है, रहने लायक नहीं है। हम लोग कहते हैं हम रह रहे हैं, 25 साल हो गए हम रह रहे हैं उधर, हाँ सब कुछ है, हम रहते हैं उधर, ऐसा कुछ क्या कहते हैं, त्याज्य जगह नहीं है वो। तो इसमें समझने की बात यह है कि जिस जगह पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ऐसे जगह पर अनंत कष्ट पाकर हम लोग फिर भी और भोग लेने का प्रयास करने का जो यत्न है उसको छोड़ नहीं रहे हैं, वो जगह का विचार करके भी वहां पर कष्ट होता है। ऊपर जय विजय को भी ये कष्ट हुआ था, अरे बाप रे इधर कौन जाएगा रहने के लिए। तो वो कहे वो दुखी हो गई वो तीन सतियां। उतने में विष्णु भाग के बाहर आए, उन्होंने कहा कि अरे महासतियों आप चिंता मत करना, ये मेरी लीला है, मैं आपको मेरी तीन महासतियां जो पृथ्वी पर अवतरित होने वाली हैं देवियां, उनकी माता बनने के लिए भेज रहा हूं, मेरी लीला में सहभाग देने के लिए भेज रहा हूं, आपके लिए पनिशमेंट नहीं है ये, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना लीला का, तो लीला के माध्यम से आपको ले जा रहा हूं। तो फिर वो शांत हो गए। तो एक बनी पार्वती की मां, हिमाचल की पत्नी, एक बनी जनक महाराज की पत्नी जो सीता देवी की मां बनी सुनैना, और एक बनी कलावती जिसने आगे जाकर कीर्तिदा के रूप में जन्म लिया। समझ में आपको आया? तो तीन महासतियां जो राधा रानी, सीता देवी और पार्वती देवी है, इनको पृथ्वी पर प्रवेश देने के लिए इन महासतियों को मां के रूप में भेजा भगवान ने, ये उसका एक इतिहास है। तो ये कलावती जो है इसका विवाह सुचंद्र से हुआ, राजा सुचंद्र से, और दोनों इतने महान भक्त थे भगवान के, उन्होंने 12,000 साल पेड़ से पड़ते हुए सूखे पत्तियों को प्राशन करते हुए तपस्या किया और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा, मांगो क्या चाहिए। तो सुचंद्र महाराज ने बताया मुझे मुक्ति दे दो, मोक्ष, भगवान के धाम में निवास दे दो। तो उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो तुरंत कलावती को क्रोध आया, उन्होंने कहा मेरे होते हुए आपको, आप कैसे मेरे पति को मोक्ष दे सकते हैं। अभी वो महासती थी, ब्रह्मा जी डर गए, हाँ गर्ग साहित्य में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी डर गए, महासती ने अगर श्राप दे तो मेरा भी कोई खैर नहीं, तूने झट से अपने श्राप को कैसे ना ऐसे रिकंसाइल किया, कि डोंट वरी आप ऐसे करो, मैं इनको मोक्ष अभी देता नहीं हूं, आप मेरे ब्रह्मा लोक में निवास करो और भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है राधा रानी वो आपकी पुत्री बनकर आएगी, तब आप पृथ्वी पर आके उसको जन्म दोगे और इस जन्म के पश्चात आप भगवत धाम चले जाओगे। जल्दी जल्दी में अपने आप को श्राप से बचाया उन्होंने और कीर्ति को शांत कर दिया कलावती देवी। तो वो कलावती देवी देखिए कैसा है ना, जैसे मैंने कहा था ना पातिव्रत्य का जो शक्ति होती है ना, सबको डरना चाहिए उससे। स्त्री के अंदर जो पातिव्रत शक्ति होती है वो दुनिया के पारिवारिक जीवन का एक सस्टेनेंस पावर है, तो कभी भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए उसका। पतिव्रता स्त्री जो होती है वो पृथ्वी का एक भूषण है, अलंकार है पृथ्वी का, पार्वती जैसा। तो फिर ये दोनों ने अगले जन्म में वृषभानु और कीर्तिदा, इंदुसेन मुखारा देवी के गर्भ में कीर्तिदा देवी के रूप में, और कंजभानु और सुखदा देवी के गोद में वृषभानु महाराज ने जन्म लिया और यथावकाश राजा रानी के माता पिता बने हो, यह एक इतिहास है। तीसरा इतिहास यह है कि एक दिलीप राजा थे रघु सूर्यवंश में, भगवान चंद्रवंश में आए है ना, तुमको पता है ना भगवान चंद्रवंश में आए तो भगवान चंद्र ने क्या किया, भगवान आए तभी बताइए, अष्टमी के चंद्र आधे चंद्र पूर्ण चंद्र बन गए एक ही बार, ऐसे पूरे सृष्टि के इतिहास में एक नियम का अनुकूल उल्लंघन किया गया, अभी कभी भी ऐसा हुआ नहीं आज तक, नोबडी कैन डू दैट, चंद्र हिमसेल्फ कैन नॉट डू दैट, लेकिन एक बार उनको डिस्काउंट दिया गया ब्रह्मा की तरफ से कि मेरे वंश में भगवान आ रहे हैं, मैं आधा क्यों रहूं, मैं पूर्ण हो जाऊंगा अष्टमी के दिन, पूर्ण महा हो गए, उससे कमल भी कंफ्यूज हो गए, सूरज आ गया तो वो खिल गए, एक कारण है उसका कमल खिलने का। दूसरा कारण यह है कि हमारी लक्ष्मी देवी स्वयं नंद महाराज के आंगन में नंदोत्सव मनाने के लिए अपना ऐश्वर्य बिछाने जा रही है, तो यहीं से गुजरेगी क्योंकि स्वागत में सब कमल खिल गए, और तीसरे भगवान के स्वागत के लिए खिल गए, क्योंकि उसके बाद में भगवान ने फिर लक्ष्मी को भेजा। हाँ लक्ष्मी जो है वो नंदगांव लक्ष्मी का राज्य हो गया, ऐश्वर्य ऐश्वर्य हो गया उधर, वो पहले गई भगवान के आदेश से, उसके बाद वसुदेव जी भगवान को लेकर गए तो सबके स्वागत के लिए बीच रात में कमल खिल गए। एनीवेज तो सूर्यवंश में एक राजा हुए दिलीप राजा, बड़े गाय के भक्त थे वो, एक बार वैकुंठ में भगवान से मिलने गए तो वहां पर उन्होंने कामधेनु गाय को वंदन करना भूल गए वो, तो कामधेनु ने श्राप नहीं दिया उनको, कामधेनु को न वंदन करने की वजह से ऑटोमेटिक श्राप लग गया, जैसे हमारे ऑफिस में ना वो पंचिंग कार्ड होता है, हाँ कनेक्ट करना जरूरी ना आपको भी, तो पंचिंग कार्ड क्या होता है, अगर आप 3 दिन 15 मिनट लेट पंच किया तो ऑटोमेटिक हाफ डे सीएल कट हो जाता है, आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं, जानकारी भी जरूरत नहीं, वैसे ऑटोमेटिक कामधेनु को न वंदन करने से श्राप लग गया उनको, कामधेनु ने नहीं दिया, एचआर ऑफिसर ने हाफ डे सीएल कट नहीं किया, वो सॉफ्टवेयर ने ही कट कर दिया उसका हाफ डे सीएल। तो क्या श्राप दिया, क्या मिला श्राप उनको, कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। तो दिलीप महाराज ने विष्णु भगवान से वंदन वंदन करके वापस आ गए, कई साल बीत गए पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, उम्र होती जा रही है, तो वशिष्ठ मुनि को बुलाया एक दिन, पूछा महाराज क्या समस्या है, हमारे जीवन में पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं है, राज्य को कौन संभालेगा, हम तपस्या करने जाएंगे। तो उन्हें ध्यान लगाया त्रिकालदर्शी, लगा कि आपके कामधेनु का अपराध है आपके नाम पे, पुत्र नहीं हो सकता है आपको, तो क्या करें, बोले कोई डोंट वरी, साधु लोग बड़े दयालु होते हैं, साधु लोग हमेशा ना अपने आप को एक्सटेंड करते रहते हैं जीव के कल्याण के लिए, कभी कभी आउट ऑफ द वे मतलब ना दायरे से बाहर जाकर वो ऐसा काम करते हैं, समय से मैं निकाल कर जाते हैं और कुछ ना कुछ कल्याणकारी कार्य कर देते हैं। तो वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं, चिंता मत करना, मेरे पास उसी कामधेनु की कन्या है नंदिनी के रूप में, अब उसकी सेवा करना। तो गौ भक्त तो है वो, पहले से बड़ी दिल से सेवा किया नंदिनी की, पूरी वो कहाँ गए वो देना मुझे, वेयर इज युगल शैम्पू। तो नंदिनी की बहुत अच्छी सेवा की, उसके बाद में उनको पुत्र प्राप्ति हुई, उसका नाम क्या है, रघु राजा, फेमस रघुवंश जिस नाम से बना हुआ है, वो रघु राजा जो है ना रघुकुल की ये रीत चली आई, प्राण जाई न वचन न जाई, ये जो कहते हैं हम किसके ऊपर कहते हैं, वो रघुराजा, वो रघुराजा का जन्म हुआ दिलीप के गोद में। फिर रघुराजा के पश्चात काफी राजा हुए, फिर दशरथ महाराज, फिर रामचंद्र भगवान, और उसी वंश में फिर रसंग राजा हुए। और कहते हैं रसंग राजा ने श्री बरसाना धाम को बसाया एक राज्य के रूप में, और उसके बाद में फिर राधा रानी का जन्म हुआ। तो ये राधा रानी के वंश इतिहास है। थोड़ा सा आप कीर्तन 2 मिनट कीजिए, एनर्जी सप्लाई करते थोड़ा सा गाओ गाओ हरे कृष्ण मंत्र गाओ, श्रीमती राधा रानी की। तो इस प्रकार से रसंग राजा ने बरसाने को बसाया, और उसके पश्चात विश्वानु महाराज आए और राधा रानी को वहां पर प्रकट हुए। राधा रानी के जन्म का इतिहास ऐसा है, खैर शाम को विस्तार में कहने को पता नहीं मिलेगा कि नहीं। विंध्याचल पर्वत, हिमाचल पर्वत, सह्याद्री पर्वत, ये सब व्यक्ति हैं, वो पर्वत रूप में भगवान की सेवा करते हैं विश्व के कार्य को चलाने के लिए, लेकिन सब भगवान के भक्त हैं। तो विंध्याचल, सॉरी हिमाचल को पार्वती देवी प्राप्त हो गई। जब मैंने कहा ना वो ऊपर से महासती आई, हिमाचल का विवाह एक सती से हुआ और पार्वती देवी का जन्म हुआ। तो पार्वती देवी का जन्म होते ही पार्वती अन्नपूर्णा जी हैं, पार्वती सब कुछ हैं, तो इतना वैभव प्राप्त होगा हिमालय में पार्वती का जन्म होते ही। तो विंध्याचल को असूया नहीं हुई, लेकिन विंध्याचल को लगा मुझे भी कैसी पत्नी होनी चाहिए। और यथावकाश पार्वती का विवाह शिवजी से हुआ, महादेव, हाँ महादेव शिव शंभु, उनके साथ में उनका विवाह हो गया। तो आप देखिए महादेव तो ब्रह्मा जी भी उनको पूजते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र होने के बाद भी ब्रह्मा जी उनका पूजन करते हैं महादेव के रूप में, सभी देवता उनको महादेव के रूप में मानते हैं। तो इतना हिमाचल का वैभव हो गया, कन्या पार्वती, जमाई शिवजी। तो विंध्याचल के मन में ऐसी इच्छा हुई कि मुझे ऐसी कन्या एक होनी चाहिए जो ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो शिव जी को भी परास्त करने में समर्थ हो। समझ में आया कुछ कनेक्शन? उनके कन्या का विवाह शिव जी से हुआ, मुझे ऐसी कन्या होनी चाहिए जिसका विवाह उस व्यक्ति से होना चाहिए जो शिव जी को भी युद्ध में परास्त कर सके, उससे भी बलवान हो। ऐसे विचार करके उन्होंने तपस्या आरंभ किया, यज्ञ करना आरंभ किया, और उसके फल में उनको 2 कन्याएं प्राप्त हुई, एक है राधा रानी और एक चंद्रावली। और कंस के कानों में खबर पड़ी कि ये लड़की का जो भी पति होगा वो शिव से भी अधिक बलवान होगा। तो राक्षस की मति कैसी होती है, क्यों ना मैं ही उसका पति बन जाऊं। देखो शिवजी से तपस्या करके कितने वरदान लिए, हाउ अनग्रेटफुल, हाँ इमेजिन, इतना तपस्या करके शिवजी से वरदान लिया उन्होंने, कैलाश को उठाया, शिवजी ने दबाया, हाथ को दबाया, फिर त्राही त्राही हुआ, फिर शिवजी ने प्रसन्न करके पैर निकाल दिया, फिर सामने आए, वरदान मांगा तो बहुत सारे वरदान ले लिए उनसे, मतलब आराध्य बनाया अपने स्वार्थ के लिए उनको। ये देवता राक्षस लोग होते ही ऐसे हैं, किसी की पूजा भी उनके प्रेम के लिए नहीं करते, सबकी पूजा जो है वो स्वार्थ के लिए करते। कामस्तैत्य ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, राक्षस उसके प्रमाण है। तो जो शिवजी से आराध्य बनाकर आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, वरदान प्राप्त किए हैं, अभी तुरंत क्या सोच रहे हैं, चलो मैं इस लड़के से विवाह करूंगा और शिवजी को परास्त करूंगा, उससे ही ज्यादा बलवान हो जाऊंगा। तो उस समय पुतना थी उधर, सब लोग थे, सब कंस का इतिहास साइमल्टेनियस चल रहा है उधर, कंस का जन्म हुआ, राक्षसों का दिग्विजय किया, सबको वश में किया वगैरह वगैरह, पुतना उनके साथ में है। तो पुतना को आदेश देते हैं जाओ विंध्याचल में जाओ, और जो 2 कन्या है पता नहीं उसमें से कौन सी कन्या को ये वरदान प्राप्त है, दोनों कन्या को उठा के लेके आओ, दोनों कन्याओं को मैं पत्नी बनाऊंगा। और या तो क्या कहते हैं उसको, अनायासी मुझे ये बल और पद प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। तो पुतना गई, वो तो खींच रही है ना, वो तो तिनके को अभिमंत्रित करके विमान बनाकर उस पर बैठ के चलती है। वो कोई हवाई जहाज का टिकट निकालने की जरूरत नहीं उसको, ऊपर नीचे होने वाला रेट, डायनेमिक रेट्स वगैरह वगैरह कुछ नहीं, सीधे तिनका उठाती है, मंत्र बोलती है, उसको विमान बनाती है, उस पर बैठ के कहीं से भी चले जाती है, कहीं पर भी। तो सीधे आकाश से उठते ही मथुरा जिले से आई और महाराष्ट्र के ऊपर ऐसी आई, अचानक सबके बीच में उतरी, दोनों कन्याओं को उठाया और चली गई आकाश में। हमारे भौतिक दुनिया में संकट ऐसे ही आते हैं, आप बना रहे हो आनंद की कन्या हुई, अभी समृद्धि होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, खुशियां मना रहे हैं, अचानक विघ्न आ जाता है, सारे आपके खुशियों में विष घोल देता है। होता है कि नहीं ऐसे, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टाइम, जब आप कभी आपको अपेक्षा भी नहीं है कि ऐसे होगा और अचानक आपको धक्का देकर वो घटना होगी और आप देखते रह जाओगे, अरे क्या सोचा था और क्या हुआ। ये भौतिक दुनिया का विशेष स्थायी भाव है। तो खुशियां मनाई जा रही, उसमें से अचानक आकाश से एक राक्षसी आती है और दोनों कन्याओं को, जो हमारे सारे सुखों का स्रोत है, सारे सुखों का कारण है, उसी को ले जाते। तो ये तुरंत विंध्यचल जो है ना, एकदम सतर्क हो जाते, अरे क्या हो गया, देख रहे हमारी कन्या को ले जा रहे। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाते हैं, देखो ज्ञानी पुरुष है, ब्राह्मणों को बोलते हैं अभी के अभी यज्ञ करो और यज्ञ से उसके शल में शरीर में दाह उत्पन्न करो, उष्णता उत्पन्न करो, जलाओ उसको आकाश में, उसके अग्नि तत्व को प्रकाशित करो और आकाश में उसको जला दो। तो ये तुरंत बैठते हैं और तुरंत देखो ब्राह्मणों की शक्ति क्या आती है उन दिनों में, ऐसे नहीं कि माचिस लगा रहे बोले अरे महाराज बारिश की वजह से गीला हो गए, चलता ही नहीं है, क्या करूं, मुझे यज्ञ तो करना है लेकिन कैसे करूं, ऐसे नहीं थे वो। मंत्र बोलकर तुरंत मंत्राग्नि उत्पन्न करके तुरंत यज्ञ करते हैं, तत्क्षण एक्सप्रेस यज्ञ में तुरंत उसके शरीर में दाह उत्पन्न होता है। वो महाराष्ट्र से उड़कर मथुरा की ओर जा रही है, कंस महाराज के पास सुपुर्द करना है उसको, दो कन्याओं को। तो बीच में ही दाह उत्पन्न कर देती है, महाराष्ट्र के अंदर ही तुरंत ही, और वो ऐसे नहीं कि आराम से उड़ते, वो तो इमरजेंसी तुरंत पहुंचाना है, तो वेग से जा रही हो, लेकिन उधर की उधर ही उनके मंत्रों का प्रभाव ऐसे है कि आहुति डाल रहा है स्वाहा, तो उधर अग्नि उत्पन्न हो रही है, तो उसका जो है शरीर में दाह उत्पन्न होता है, इससे स्टार्ट्स बर्निंग। तो एक कन्या को तो वो ग्रिप ही छूट जाती है उसकी, उसकी पकड़ने की शक्ति जो है, वही एक कन्या गिर जाती है, कहां पर, विदर्भ देश, भीष्मक राजा, आगे होने वाले रुक्मिणी के पिताजी जो ऑलरेडी उधर है, अभी रुक्मिणी हुई नहीं है, आगे होगी उनको। भीष्मक राजा के पुत्र का नाम क्या है, रुक्मी, और चार भाई है उसको, होने वाले हैं अभी, अभी वो संतान नहीं है उनको, तभी ये उनके यहां पर आंगन में गिर जाती है और उनको प्राप्त हो जाती है, वो है चंद्रावली। चंद्रावली का 5 साल तक लालन पालन करते हैं, फिर पूर्णमासी देवी जो पार्वती देवी का अवतार है वो चंद्रावली को लेके जाती है, और चंद्रभानु जो चचेरे भाई हैं, कंज भानु के भाई के पुत्र है वो, जिनकी कन्या चंद्रावली हो जाती है, और ये आगे उड़ती जा रही है और अग्नि मंत्र मोड़ने जा रहे हैं और अग्नि का दाह उत्पन्न होते जा रहा है, तब तक वो तो मथुरा तक पहुंच जाते, कैसे भी करके बोले एक तो कम से कम ले जाऊं महाराज के लिए। तो उसको भी वो, जैसे आप सोच सकते हैं, देखो लॉजिकली यहां से आप जा रहे हैं महाराष्ट्र से, आपने महाराष्ट्र पार किया, राजस्थान पार किया, अभी आप दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, पहले बरसाना आता है, उसके बाद गोवर्धन आता है, उसके बाद वृंदावन आता है, उसके बाद गोकुल रावल आता है, उसके बाद जमुना, उसके बाद में मथुरा आती है उत्तर दिशा में। तो ऐसे जा रही है वो, और मथुरा जाने के पहले, यमुना के पहले ही रावल में उनको एक बच्चे को छोड़ देते थे, वो पकड़ ही नहीं पाती उसको। इस बीच राधा रानी के जीवन का प्रायः थोड़े दिन कम लेकिन 1 साल पूर्ण हो जाता था, ऐसे उम्र वाले दो बच्चों को उठा के ले जाते हो। राधा रानी ऑलरेडी 1 साल, यानी एक्चुअली कहा जाए तो 345 दिन की थी वो, 345 डेज ओल्ड, 1 साल को 15 दिन बाकी है अभी। जब राधा रानी वहां पर गिरी है, कहाँ गिरी है, वृषभानु महाराज के जमुना जी के सरोवर में गिरी है वो, वृषभानु सरोवर में, और वहां कैसे पहुंच गए वृषभानु महाराज, वो तो बरसाने में रहते हैं, नंदगांव में नंद महाराज रहते हैं, वो दोनों कैसे पहुंच गए वहां पर, क्योंकि उनको संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। तो दोनों ने चर्चा किया कि जमुना किनारा बहुत पवित्र है, तो जमुना किनारे निवास करेंगे तो हमको वो संतान प्राप्त हो सकती है। तो दोनों ने संगन मत करके अपना राज्य ही शिफ्ट कर दिया, खुद वृषभानु महाराज रावल में बस गए और नंद महाराज गोकुल में बस गए। और यथावकाश उनको कृष्ण बलराम की प्राप्ति होती है। वृषभानु महाराज रोज सवेरे जाते हैं अपने सरोवर में स्नान करने के लिए भोर के समय, अंधेरा होता है बहुत उस समय, तो उस दिन जब गए, किस दिन, भाद्रपद शुद्ध अष्टमी के सवेरे जब गए, तो वहां पर बहुत विस्तार में फैला हुआ स्वर्ण प्रकाश था, चारों तरफ तेज, ऐसा केवल तेज ही नहीं, सुगंध और आनंद भी था वातावरण में। यू गो आउट फुल्ली फ्रेग्रेंट, तो बड़ा आश्चर्य हो गया, लग रहा है सब जगह सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। तो और पास गए और पास गए, तो देखा कि सुनहरा प्रकाश जो सब जगह फैला हुआ है वो एक जगह से आ रहा है, और वो एक अनंत पंखुड़ी वाला स्वर्ण कमल है जिसमें से वो प्रकाश आ रहा है। तो वो जल में उतरे रोज की तरह और आगे गए, तो देखा कि वो स्वर्ण कमल के अंदर एक स्वर्ण कन्या है जिसके शरीर से वो आभा निकल रही है और सुगंध निकल रहा है। तो आश्चर्यचकित हो ही रहे थे, तुरंत ब्रह्मा प्रकट हो जाते और उनको याद दिलाते हैं कि तुम स्वचंद्र हो पिछले जन्म की, तुम्हारी पत्नी कलावती थी, आज तुम वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में यहां पर आए हो, और मैंने तुमको वादा किया था कि भगवान की अंतरंगा शक्ति आपकी कन्या बनेगी, यही वो कन्या है श्रीमती राधा रानी, आप इसको अपनी कन्या के रूप में ले जाइए। तुरंत उन्होंने कमल से कन्या को उठाया, इतनी कोमलांगी थी वो, हाँ हम लोग यकीन नहीं कर सकते। एक्चुअली कहते हैं उनका शरीर राधा का, कृष्ण का, बलराम का मक्खन से भी मुलायम था। अभी आपको अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर का 1 किलो मक्खन दूंगा और आप बोलोगे उठाओ उसको, तो क्या होगा बताइए आप? आपकी उंगलियां ऐसे ज्वाइन ना, आप ऐसे उठाओगे तो वो अपनी उंगलियां अपने एक दूसरे को मिलेगी, आप मक्खन को उठा ही नहीं पाओगे, इतने मक्खन कोमल होता है। अगर इनका शरीर मक्खन से भी मुलायम है तो पकड़े कैसे इनको? दिस इज ट्रांसेंडेंटल, दिस इज मिस्टीरियस, ये हमको समझ में नहीं आता है, उसके लिए गौलोक धाम ही जाना पड़ेगा इस अचिंत्य बातों को समझने के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वन कैन बी मोर सॉफ्टर देन बटर, एंड यू हैव टू प्ले, यू हैव टू कैच, यू हैव टू गिव स्तनपान, यू हैव टू बेद हिम, यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, वेयर हिम क्लोथ्स, पंचामृत अभिषेक, कितना चीज करना है आपको, कैसे करेंगे ऐसे? ऐसे दिव्य शरीर था राधा रानी का, मक्खन से भी मुलायम, कोमल, सुगंधित। घर पे लेके आए, इतना आनंद हो रहा था, इतना हर्ष हो रहा था कि राधा रानी के प्रकट होने से ही सब हृदय में आनंदों के बौछार होने लगी, सभी दुखी जन सुखी हो गए, सभी गरीब अमीर हो गए, हाँ हाँ, गरीब जो है धनीराम है गो, और जो खाने के लिए कुछ नहीं सुखी रोटी भी नहीं, वो हलवा पुड़ी वाला हो गया, धान्य के भंडार भर गए, हाँ ऐसे सब चेंज हो गए सबके, सब लोग देखते रह गए, गरीब गरीब लोग अमीर बन गए, पूरा समृद्धि छा गई, क्योंकि पार्वती का भी स्रोत है ना वो श्री जी राधा रानी, पार्वती जी उनसे निकलती है, पार्वती का महात्म्य उनकी वजह से है। तो घर पे आए तो भी उत्सव मनाने का दिल कर रहा है, लेकिन एक दुख की बात है, क्या करें, कन्या आंख नहीं खुल रही है, कन्या मुख से कोई ध्वनि नहीं उच्चारण कर रही है, हम लोग खिलौना खिला रहे तो वो सुन रही है ऐसा लगता नहीं है, मतलब बहरी भी है, गूंगी भी है, अंधी भी है, इतनी सुंदर कन्या, इतना प्रकाश फैला हुआ, इतना सुगंध फैला हुआ है, क्या करें, सुख के फव्वारे फूट रहे हैं और दुख भी साथ में हो रहा है। दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड ऐसा होता है, कितना भी सुख आपको मिलेगा ना, ऐसे आप खीर खाने ही जा रहे हो, बहुत सुंदर खीर, एक हवा का जोता आता है और रेती उस पर गिर जाती, ऐसा हुआ है जब फेस्टिवल होता है और आपको ग्राउंड पे खाना खिलाया जाता है और वो बोल रहा है खीर महाप्रसाद, खीर महाप्रसाद, खीर महाप्रसाद, और आप ऐसा खाने जाते हो तुरंत एक हवा का झोंका आता है और खीर में मट्टी गिर जाती है, तो मट्टी गिरने के बाद खीर खा सकते हैं आप? खीर तो उतनी महान है, लेकिन मट्टी के पड़ने से उसको खीर को आनंद नहीं ले सकते आप, हो सकता है एक चम्मच खा लिया होगा, सेकेंड चम्मच के पहले आ गई होगी, थोड़ा सा मिलेगा आपको, सुख जवा पाड़े दुख पर्वत आयोडे, हाँ मिलेगा, लेकिन आई एम कन्विंस अबाउट इट, इस दुनिया में कोई भी क्या कहते ना निरामय परम स्वच्छ परम शुद्ध आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा भौतिक स्तर पर, नॉट पॉसिबल, मिलेगा ही नहीं, कितने भी आनंद की घड़ी होगी आपके जीवन में उसमें आपको दुख का चिमटा पड़ेगा ही, यह अनुभूति दिलाने के लिए, अगर यहीं पर ऐसा सुख मिलता आपको तो हम बोलते अच्छा है यहाँ पर जाने की जरूरत क्या है किधर, लेकिन बार बार हम इतनी अपेक्षा करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और आनंद के लिए योजना करते हैं, आनंद होने भी लगता है, लेकिन जब मिल रहा है तब उसमें कुछ ना कुछ अशुभ अपशकुन हो जाता है और निखालस निस्पृह आनंद का अनुभव इस दुनिया में नहीं हो सकता है. दैट इज वाई वी हैव टू वर्क हार्ड टू गो बैक टू गॉडहेड टू गोलोक वृंदावन टू बी लाइक आवर ओन सेल्फ. अपने जैसे जो स्वभाव है हमारा आनंद मयोभ्यासात वैसे बनने के लिए हमको यहां से गौलोक जाना होगा. उसके लिए अभी प्रयास करना होगा क्योंकि यहां पर आप कितना भी प्रयास करेंगे कितना भी दिव्य आनंद आपके नसीब में लिखा होगा उसके साथ दुख का मिश्र करके ही आपको मिलेगा वो. तो वृषभानंद वहां का आनंद सोच सकते हैं आप. साक्षात अंतरंगा शक्ति भगवान की लादिनी शक्ति उनके घर में प्रकट हुई है फिर भी वो दुखी है वो. तो वे क्या कर रहे हैं, उत्सव नहीं मना रहे. नारद मुनि जो है ना वो अपना सब लोग कैसे ना सब लोग सतर्क हैं, सारे देवता देव ऋषि एवरीबॉडी इज अलर्ट क्योंकि उनको पता है भगवान स्वयं भगवान के प्रथम लीला अवतार भगवान की अंतरंगा शक्ति बाकी सारे लोग पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं और गौलोक धाम में भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन नहीं होता है केवल भव वृंदावन में होता है. यहाँ पर गोकुल में कृष्ण बलराम का होगा वहां पर रावल में राधा रानी का होगा. हम सब देवता लोग जाएंगे भेष बदल कर. तो नारद मुनि भी गणित कर रहे हैं कौन से घड़ी पे होगा. तो वो बेला कैसे है, सूर्योदय की बेला गुरुवार का दिन भाद्रपद अष्टमी का दिन अरुणोदय का बेला उस समय जन्म हुआ ऐसा गणित कहता है उनका. तो नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं यहां पर कोई कन्या हुई है क्या. तो नारद मुनि को जवाब मिलता है नहीं कोई कन्या नहीं हुई यहां पर क्योंकि उनको लगता है अपशकुन है ना अभी कैसे बताएं. हाँ हाँ आप बोलेंगे कि हाँ वो अपाइज है ऐसे बोलना थोड़ा सा दुख होता है ना. तो वो बोलते हैं कि नहीं हुई है. दे डोंट वांट टू डिक्लेयर बिकॉज दे आर सैड. नारद मुनि कहते हैं अरे मेरा तो गणित गलत कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल. लेकिन क्या मालूम हो सकता है, वॉट टू डू. तो दुखी होकर वो सोच सोच के ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं. उतने में सखियां जो है वृषभानु महाराज के घर में कीर्ति दमैया की वो बता रहे हैं कि माता जी ये साधु बड़े प्रभावी होते हैं, इनके प्रभाव से क्या नहीं होता है. आपको लगता है कि इनको बताना नहीं चाहिए, आप संकोच कर रहे हो, लेकिन इनके आशीर्वाद से शायद हमारी कन्या आंख खोल सकती है, मुंह खोल सकती है, कान से सुन सकती है. साधु लोग क्या नहीं कर सकते. साधु लोगों की शक्ति है, भक्तों की शक्ति होती है. भक्त लोग भगवान से शक्ति आवेशित होते हैं और भक्तों की कृपा से क्या नहीं हो सकता है? भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते. वो नारद मुनि ने बोला पेड़ बन जाओ तो भगवान ने पेड़ बनाया उनको. लेकिन एक्चुअली श्राप था क्या, वो श्राप नहीं था. पेड़ बनाकर साक्षात बाल लीला का दुर्लभ दर्शन जो किसी संत को भी नहीं होता है वो निरंतर दर्शन दिलाया उनको उन्होंने और कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति दिलाई. तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ ऐसा कृपा किया. और भगवान ने ऐसा नहीं बोला हे नारद मुनि पहले पूछा क्या मुझे तुमने, बिना पूछे ही जाप दे दिया, कुछ सैंक्शन वैंक्शन लिया क्या मुझसे, एंडोर्समेंट सैंक्शन अप्रूवल कुछ लिया नहीं, कुछ नहीं बोल दिया मुंह से. अरे आप बोलते, भगवान बोलते बोलते जाओ, तुम्हारा जो मुंह से गिरेगा उसको मैं झेलूंगा और पूरा करूंगा. तुम्हारा वाक्य जो गिरेगा मुंह से उसको मैं आदर पूर्वक उसका पालन करूंगा. तो ये बता रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं संतों की महिमा का. तो वृषभानु माता जी महाराज और कीर्ति मैया का मन बदलता है, बोले चलो जाओ उनको ही आरती पूजा लेके बुला लो. तो भाग के उनके पीछे भागते, महाराज जी आई आई है कन्या है. तो पहले वो कहते और कोई संतान है, तो पुत्र को आगे करते, भाई सीधा माँ ये हमारे घर में पुत्र है, कन्या कोई नहीं. तो वो बोलते हैं कन्या है. तो भाग भाग के नारद मुनि तेजी से भाग के आते पहले से अधिक गति से और उनको अंतापुर में लेके जाके वो पलने में राधा रानी को रखा है. इतना सुगंध फैला है घर में, दंडवत प्रणाम कर देते हैं तुरंत. और वो पूछ रहे महाराज जी क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे समस्या है, कुछ उपाय बताइए. नारद मुनि बताए मैं जानता हूं इसका उपाय क्या है, तुरंत उत्सव मनाओ, कोई संकोच मत करो, उस उत्सव में इसके उपाय छुपा हुआ है. और बड़ी धूमधाम से पूरा लिस्ट देते हैं कि ऐसा करो वैसे करो ये करो वो करो और सबको भेज देते हैं क्योंकि उनको राधा रानी का एकांत में दर्शन करना है. साधु लोग कृपा भी करते हैं वो चतुर भी होते हैं. हाँ सब लोग तुरंत तैयारी में लग जाते, जो उनका इंतजार है उत्सव नहीं मनाया है. तो फिर जैसे ही सब लोग चले जाते हैं राधा रानी और नारद मुनि एकांत में आ जाते हैं और नारद मुनि को राधा रानी पूर्ण षोडश वर्षीय युवती किशोरी का दर्शन देते हैं. लोग किशोरी राधा रानी की पूर्ण ऐश्वर्य के साथ ऐसे हाथ लेके आशीर्वाद देते हुए. तो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे आपके अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है. तो राधा रानी कहती है कि आप कुसुम सरोवर चले जाओ वहां पर दर्शन दिलाऊंगी आपको. बड़ी लंबी कथा है बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन वहां जाकर राधा रानी कृष्ण नारद मुनि को अष्ट सखियों के साथ दर्शन देती है। एनीवे तो जन्म, अभी जन्म की कथा जो है नारद मुनि की वजह से उत्सव मनाया जाता है। नारद मुनि कहते हैं एक चीज मत भूलना, भव्य उत्सव बनाना, लेकिन नंद बाबा यशोदा कृष्ण बलराम को जरूर आमंत्रण देना, अगत्य का आमंत्रण देना, उसी में आपका उपाय छुपा हुआ है। तो उत्सव होता है सब जगह पर, हाँ क्या कहे उत्सव का, राधा रानी के जन्म का। सब जगह जो है ना ऐसे विश्वानु महाराज इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो, पहले आपको मैं उनका उपाय बताता हूं। तो वो जब नंद महाराज, यशोदा माई और कृष्ण बलराम गोद में लेकर रोहिणी मैया सब आ जाते हैं, तो आप जानते हैं ना इतनी अच्छी सहेलियां हैं वो, सखियां हैं दूसरी, कीर्ति मैया, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, तो इतना प्रेम से मिलते हैं, गले लगाते हैं, आगत स्वागत करते हैं प्रेम से, आदान प्रदान भेंट वस्तु देते हैं, गले लगाते हैं, आलिंगन देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। उसने में ये कृष्ण जो है ना वो रेंगते हुए चले जाते हैं अंतापुर की ओर। ये यहाँ पर माते करने मग्न हैं, उनको पता ही नहीं कैसे उपाय होने वाला है, दे आर जस्ट सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। कृष्ण भगवान राधा रानी के अंतापुर में प्रवेश करते हैं, जहां पर पलने में उनको रखा गया है। वो ना आवाज कर रहे, ना कुछ सुन रहे, ना कुछ बोल रहे, ना कुछ देख रही है। तो एक जगह लिखा है कि कृष्ण भगवान की सुगंध से ही राधा रानी की नासिका जागृत हो गई, यानी अलर्ट हो गई, और तुरंत उन्होंने आंखें खोल दी और तुरंत किल्लोल किया प्रेम से। रोना तो नहीं कह सकते उसके लिए, है ना, उनकी ध्वनि, मधुर ध्वनि उन्होंने की, और वो ध्वनि सुनकर सब लोग भाग के आए उस पलने के पास, सब लोग, कीर्ति मैया, शुभानु महाराज, सब सखियां, नंद महाराज, यशोदा, रोहिणी, सब भाग के आए। और देखा तो ऑलरेडी बालिका किल्लोल कर रही है आनंद से, सब लोगों ने जय घोष किया। एक जगह लिखा है कि कृष्ण भगवान रेंगते 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 गए, और जैसे जो जिन बालकों को अभी तक खड़ा होना नहीं आता है वो कैसे पकड़ पकड़ के खड़े रहते हैं ना, वो धोती को, साड़ी को पकड़ के खड़े होते हैं, वैसे वो पलने को पकड़ के ऐसे खड़े हो गए और राधा रानी को स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया त्वचा उद्दीपित हो गई और उन्होंने आंखें खोली और किल्लोल किया। इस प्रकार से राधा रानी का एक प्रकार से प्रथम बार आविर्भाव हुआ। कारण क्या था उसका, जब भूमि माता उद्विग्न होकर गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी उनको क्षीर सागर के किनारे ले गए और प्रार्थना किया। महाराज जी बताते हैं कि भूमि माता ने गाय का रूप धारण क्यों किया, और एनी अदर एनिमल पंछी बन सकती थी ना, गाय का रूप धारण क्यों किया, क्योंकि वो जानती है कि भगवान को गाय बहुत प्रसन्न प्रिय है, और गाय के रूप में जाऊंगी और अपना निवेदन रखूंगी तो तुरंत सुनेंगे वो, इसलिए वो गाय बनकर गई। हर बार गाय बनकर जाती है, राम के समय, नरसिंह के समय, इसके समय, उसके समय, कृष्ण के समय, कंस के समय, हर समय। तो वो जो गर्ग संहिता के अनुसार वो जो क्षीर सागर विष्णु हैं वो प्रकट होते हैं, भागवत में लिखा है कि वहीं से मैसेज भेजते हैं और आगे की लीला होती है। लेकिन अलग कल्प में ऐसी लीला हुई है कि वो क्षीर सागर के विष्णु जो है वो बाहर आते हैं और सभी देवताओं को, गौ माता को जो भूमि देवता है, और ब्रह्मा जी को लेकर गौलोक धाम चले जाते हैं, और वहां बड़ी सुंदर लीला है। एनीवेज तो वो उस समय कृष्ण श्री हरि गौलोकेश्वर परात्पर भगवान लीला पुरुषोत्तम वहां प्रकट होते हैं और पृथ्वी को वरदान देते हैं कि आप चिंता मत करना, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, मेरा सारा परिवार आएगा, देवता लोग आएंगे, आप निश्चिंत रहो। सबको आदेश दे देते हैं, आप ये बनो, आप वो बनो, इस वंश में जाओ, उस वंश में जाओ, वहां अपना पोजीशन ले लो, मैं आऊंगा उस समय के बाद में, आप सब तैयार रहो मेरे लिए, सभी लोगों को भेज देते हैं। उस समय जब भगवान ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं, अभी आप कहां पर हो, सब लोग हो ना कि नहीं हो, सब लोग अभी गोलोक वृंदावन में हो, गोलोक धाम की, तो गोलोक धाम में श्री हरि खड़े हैं, सब देवता यहां खड़े हैं, गौ माता खड़ी है, और भगवान अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। तो राधा रानी उनके बाजू में खड़ी है, तो बेहोश हो जाती तुरंत। भगवान को बड़ा आश्चर्य होता है, सब सखियां आकर उनको जगाती है, तो क्या हुआ, कह रहा कि आपके आने वाले विरह को देखकर मैं बेहोश हो गई। उसको प्रेम वैचित्र कहते हैं, अभी तक वो दुख हुआ नहीं आपको, लेकिन आगे होगा एंटिसिपेटेड, वो देखकर अभी से दुख होने लगता है, उसको प्रेम वैचित्र कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे किसने बताया कि मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, मैं तो सारा प्लान आपके साथ ही किया है, नहीं मैं नहीं आऊंगी और मैं विरह का अनुभव करूंगी इसलिए मैं बेहोश होगी, और तुम क्यों नहीं आओगे। कहती है जहां पर वृंदावन यमुना देवी और गोवर्धन नहीं है वहां पर मैं नहीं रह सकती। अभी हम सब लोगों को कृतज्ञ होने कृतज्ञ ग्रेटफुल होने का यह मौका है, क्योंकि राधा रानी ने अगर ऐसा नहीं कहा होता तो पृथ्वी पर वृंदावन यमुना गोवर्धन प्रकट नहीं हुआ होता। आज के तारीख में पृथ्वी पर जो वृंदावन गोवर्धन यमुना जी प्रकट है वो केवल राधा रानी की कृपा से है। भगवान ने राधा रानी का मंतव्य सुनकर तुरंत आदेश दिया, 84 कोस गोलोक का हिस्सा, पूरी यमुना और पूरा गोवर्धन पृथ्वी पर प्रकट हो जाए। एक जगह पर लिखा है कि राधे आप चिंता क्यों करती हो, आपका मंतव्य मैं पहले से जानता हूं और मंतव्य जानकर पहले से ही पृथ्वी को भेज दिया है, पृथ्वी पर मैंने गोलोक वृंदावन को। बोलो श्रीमती राधा रानी की, हम लोग गोलोक जाने के योग्य नहीं है, यहां पर दुख भोग रहे हैं, फिर भी इसी पृथ्वी पर जहां पर हम अपना ये शरीर लेकर चल रहे हैं उसी भूमि पर भगवान ने गोलोक धाम को प्रकट किया है, पूरी यमुना के साथ, पूरे ऐश्वर्य, पूरे गौरव और पूरी लीलाओं के साथ, पूरे माधुर्य के साथ प्रकट किया है। तो इसलिए राधा रानी ने कहा था कि हां फिर भी मेरी एक शर्त है, मैं जाऊंगी लेकिन बिना आपको अनुभव किए हुए। अनुभव क्यों, मैंने ऐसा नहीं कहा कि देखे हुए, अनुभव यानी कि अनुभव तो खुशबू से हो सकता है ना, गंध से भी अनुभव हो सकता है। यू कैन फील अ पर्सन बाय स्मेल, बाय टच, स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं, श्वास गंध से अनुभव कर सकते हैं, दृष्टि से अनुभव कर सकते हैं, शब्द से अनुभव कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं। आपको अनुभव किए बिना मैं मेरे कोई इंद्रिय खोलूंगी नहीं, आई विल नॉट ओपन एनी ऑफ माई सेंसेस। इसलिए वो ना रो रही थी, ना बोल रही थी, ना सुन रही थी, ना कुछ नहीं कर रही थी, सब दुकान बंद था उसका। हमारा भी ऐसे ही होना चाहिए, हमारे सारे दुकान दुनियादारी के विषय होते ही खुल जाते हैं, है ना। अभी देखो, अभी मैं कथा कर रहा हूं, कितना मुझे भी ऐसा वाइब्रेशन लग रहा है यहां पर, कितने लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मैं जगा रहूं कि सो जाऊं, टू डू और नॉट डू, टू बी और नॉट टू बी, है ना, कितना कष्ट है यहां पर। लेकिन अभी खुशी कोई षड्यंत्र है, कोई ऐसा कोई फिल्म स्टार या कोई ऐसा दुनिया की कोई कहानी शुरू हो जाएगी, सब लोग खो जाए, क्या हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो तुरंत जगेंगे सब, सब नींद उड़ जाएगी सबकी। तो हमारा दुर्भाग्य क्या है कि भौतिक विषयों में हमारे सारे इंद्रिय बहुत तत्पर रहते हैं, जागृत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं सबको ग्रहण करने के लिए। भौतिक समस्या आ जाए तो हम तुरंत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विषय शुरू करते ही हमें नींद आने लगती है, हमारे सांद्रिय इंद्रिया सोने लगती है, ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रयास पूर्वक हमको साधना करके हमारी दिव्य इंद्रियों को जगाना चाहिए और भौतिक इंद्रियों को सुलाना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही जागरूक रखना चाहिए। मटेरियल सेंसेस और मटेरियल इंटेलिजेंस उतना ही उससे काम लेना है जितना दुनिया में जीना जरूरी है, उतना ही निकालना है उनका काम। बाकी सारा काम जो हमारा है वो आध्यात्मिक है, और दिव्य इंद्रियों को जागृत करके, दिव्य साधना करके, भगवान की सेवा में रहते हुए, गुरु जी की सेवा करते हुए, सत्संग में रहते हुए हमारी दिव्य चेतनाओं को हमको जागृत करना चाहिए। जितनी हमारी साधना शुद्ध होती है उतनी हमारी जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी, परसेप्टेबिलिटी और गहरी हो जाती है। द मोर प्योर लाइफ वी लिव, मोर आवर सेंसेस विल बिकम सटली परसेप्टेबल। हमारी जो है ना आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, संवेदन शक्ति, वो सब जागृत हो जाती है जितना हमारी साधना शुद्ध है और पवित्र है। तो राधा रानी उसकी क्या कहते हैं ना, उसका परमोच्च लक्षण है, उनकी सारी इंद्रियां पार्शली ओपन नहीं, सब बंद है उनकी इंद्रियां, केवल कृष्ण के लिए, उधर भौतिक इंद्रियां है ही नहीं उनकी बस, और कृष्ण के संपर्क के बिना वो खोलना भी नहीं चाहती उसको, किसी भौतिक वस्तु के लिए वो उसको ग्रहण नहीं करना चाहती है उन इंद्रियों से, इसलिए कृष्ण के लिए इंतजार कर रही थी। और उसके बाद में आंखें खोली उन्होंने, फिर वृषभानु महाराज का उत्सव शुरू हो गया राधाष्टमी का, सब जगह बधाई गाने लगे, बाजे बाजे री बाजे बाजे आज बधाई माई सोहिलो, मैया सुनो, दीदी सुनो, मौसी सुनो, राधा रानी ने जन्म लिया है, वृषभानु के यहां लाली जाई है, बधाई हो बधाई हो। विश्वभानु महाराज जैसे ही आंखें खुलते इतनी खुश हो जाते हैं, राधा रानी के पिताजी हैं वो, नंद महाराज से भी अधिक अमीर है वो, रईस, उनके पास कई भंडार हैं रत्नों के, अलग अलग सेग्रीगेटेड असॉर्टेड। एक खोल देते हैं पहले मोतियों का, सब संतों को बांट देते हैं, संत लोग भर भर के ले जा रहे हैं। गाय का दान हो रहा है, हाथियों का दान हो रहा है, घोड़ों का दान हो रहा है, अलंकारों का दान हो रहा है, धान्य का दान हो रहा है, खाद्य पदार्थ का दान हो रहा है, सब कुछ धान्य दान हो रहा है। तो ये अपने झोली में मोती भरकर ले जा रहे हैं और जा रहे हैं खुशी से आनंद से भर भर के। तो खबर आती है कि अभी रत्नों का भंडार खोल दिया गया है, तो ये सब डालते हैं जमीन पे ऐसे, तो वापस जाते हैं। तो महाराज वहां पर लुटाते हैं, रत्नों को लुटा देते हैं, सब लोग झोली भर भर के रत्न लेके जा रहे हैं और बोल रहे वाह क्या बात है, पहले मोती थे रत्न मिले। तो जा रहे हैं बातें करते करते तो सुन रहे हैं कि अभी पाचू यानी क्या ग्रीन ज्वेल कौन सा होता है, सैफायर इज ब्लू, एमरल्ड इज रेड, रूबी रूबी इज रेड और पाचू पाचू कहते हैं उसको पाचू। हाँ तो पाचू का भंडार खोलते हैं, फिर लाल भंडार रूबी का भंडार खोलते हैं एमरल्ड, फिर ब्लू नीलमणि का भंडार खोलते हैं, ऐसे करके करके एक एक भंडार को लेके जा रहे हैं, वो रस्ते में डाल के जा रहे हैं। इसलिए पूरे ब्रज में खास करके बरसाने के अंदर और बरसाने के बाहर सब जमीन पर रत्न फैले हुए थे उस दिन। आप सोच सकते हैं ऐश्वर्य राधा रानी के होने से ऐसा ऐश्वर्य फैलता है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। राधा रानी को जीवन में ग्रहण करने के बाद में आपके जीवन में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं आपको, कि भोजन कहाँ से आएगा, घर कहाँ से आएगा, रोटी कहाँ से आएगी, ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से होगा, ये जरूरत कहाँ से पूरी होगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जहाँ राधा रानी का आविर्भाव होता है, जिनका नाम पुकार के आप उनको ग्रहण कर लेते हो, उनकी शरण ग्रहण कर लेते हो, वहाँ पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से वृषभानु महाराज ने पूरे ब्रज भूमि को रत्नों से भर दिया, अलंकारों से भर दिया, सब जगह पर अलंकार ही अलंकार, आनंद ही आनंद। और फिर सब देवता लोग आए, रमा लक्ष्मी देवी, सभी देवताएं इंद्राणी इंद्राणी और सभी देवताओं की पत्नियां देवता सब भेष बदल कर आए। कीर्ति मैया और वृषभानु महाराज लुटा रहे हैं सब लोगों, इतना लुटाया इतना लुटाया, सब लोगों ने भी दूसरों को लुटाया, उसको जो मिला वो दूसरों को लुटाया, वो भी निराशक्त और देने वाले लेने वाले भी निराशक्त हो गए उस दिन, आनंद से भर गए। आदमी विरक्त कब हो सकता है, जब उसका हृदय प्रेम भक्ति के आनंद से भरा भरता है तो वो विरक्त अपने आप ही हो जाता है, उसको दुनिया की किसी वस्तु की आसक्ति रहती नहीं है, क्योंकि दुनियादारी की जो आसक्ति होती है जिस जगह रहती है उस जगह ही आनंद जाके भर देता है, तो वो उसको निकलना ही पड़ता है वहां से, तो सारी जो आसक्तियां दुनियादारी की है वो नष्ट हो जाती है जैसे ही कृष्ण और प्रेम राधा रानी के प्रेम भक्ति का आनंद हृदय में भर जाता है। इस तरह से राधा रानी की जन्म की बधाई बहुत धूमधाम से चली गई। और उसके बाद में फिर गर्ग मुनि आए, और गर्ग मुनि का भी ये बहुत रहस्यमय विजिट है। एक तो कृष्ण के यहाँ पर विजिट भी बहुत रहस्यमय था, उनका गुप्त विजिट था, क्योंकि है वसुदेव के पुरोहित, तो अगर किसी का नाम रखने गए मतलब उसके पुत्र वहां पर है ऐसा मालूम पड़ेगा कंस को, इसलिए गौशाला में गुप्त रूप में उनका नामकरण किया। और वहां से ऐसे लिखते हैं कि गर्ग मुनि वहां से निकल के गुप्त रूप में बरसाना गए, आई मीन रावल गए, और रावल में जाकर उन्होंने वृषभानु महाराज को, वृषभानु महाराज को मिले वो। और जो मैंने आपको बताया ना, वृषभानु महाराज ने गर्ग मुनि को राधा नाम का अर्थ पूछा, वो जो कहानी सुनाई वो तब प्रसंग हुआ। लेकिन वृषभानु महाराज को हाथ पकड़कर गर्ग मुनि दूर एकांत में ले गए और उनको जाकर उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी जो कन्या है ना, ये साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति, ये बड़ी महाप्रतापी है, इसका प्रताप अमर्याद है, असीम है, आप बड़े भाग्यवान हो, साक्षात भगवान की अंतरंग प्रिय सखी आपके घर में जन्म लिए। तो कहते हैं कि फिर इसका विवाह किससे करें, तो बोले वो जो इनके पति हैं वो नंद के यहां पर जन्म ले चुके हैं, यथावकाश इनका विवाह आप उनसे ही कर लेना। तो वृषभानु महाराज गर्ग मुनि को एकांत में आश्वासन देते हैं कि हम यथा अवकाश जब उपवर हो जाती है हमारी कन्या, तो उसका विवाह हम नंद बाबा के पुत्र से ही करेंगे। बोलो नंद के लाला की, वृषभानु महाराज की राधा रानी की। तो ये महाप्रतापी का विषय निकला है तो बताना जरूरी है आपको, ये महाप्रतापी क्या होता है। ब्रज के इतिहास में थोड़ा पानी मिलेगा, ब्रज के इतिहास में एक विस्मय कथा आती है, विस्मय कथा। वो विस्मय कथा का अर्थ ये है कि एक जगह है ब्रज में, इसका नाम है चौरासी खंबा। आपने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना है। चौरासी खंबा वो जगह है जहां जहां पर नंद बाबा बसे, गोकुल में बसे, नंदगांव में बसे, काम्यवन में बसे और बहुत जगह भी बसे अलग अलग समय लीला करते समय। तो वहां पर उन्होंने चौरासी खंबा करके एक हॉल बनाया, वो उनकी मीटिंग की स्थली थी, जहां पर रोज शाम को वो सारे गोप जो थे महागोप वो मिलते थे और जो उस दिन में क्या घटना हुई उसके बारे में चर्चा करना, उसका परपोट देना, उसका आनंद लेना, उसका स्वाद लेना। कितनी कितना सुंदर जीवन है आप देखो, जस्ट इमेजिन होल डे इन सर्विस टू कृष्णा एंड इन द इवनिंग यू डिस्कस अबाउट कृष्णा एंड यू प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, यू गो टू स्लीप, वेक अप फॉर नेक्स्ट डे, स्टार्ट सर्विंग कृष्णा। यशोदा मैया क्या कर रही है? हा? कल जो हुआ वो जो पता चला वो आज गीत बनाकर उसको दही मंथन करते करते गाया जा रहा है। द सॉन्ग ऑफ यस्टरडे इज हैपनिंग इज बींग संग विद ग्रेट डिवोशन विद द म्यूजिक ऑफ द बैंगल्स एंड द एंकल बेल्स एंड द आर्मलेट्स एंड द इयररिंग्स। उसके संगीत पर वो गीत गाया जा रहा है, उसी में दही मंथन हो रहा है, उसी के लिए मक्खन बना रहे हैं, उसी के लिए गायों को संभाल रहे हैं, उसी के लिए गाय का घास बना रहे हैं, पद्मगंधा। ऐसा सुंदर जीवन है। तो ये जीवन चौरासी खंबा में क्या होता है, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। उसका भाव ऐसा है उस जगह का कि वहां पर सारे महान भक्त भगवान के जो है एकत्र आकर भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, क्या हुआ उसके बारे में सुनते हैं, क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करते हैं, क्या अगर संकट आया तो उसके बारे में उपाय का भी चर्चा भी करते हैं। और एक वाक्यता है उसके अंदर, कोई मतभेद नहीं है उसके अंदर, एक वाक्यता है। प्रभुपाद जी क्या बताए थे कि भक्तों को बाहर से कोई मार नहीं सकता है, भक्त अंदर से ही समाप्त हो सकते हैं। अगर अंदर से झगड़ा करेंगे, मतभेद अहंकार द्वेष को पना देंगे तो झगड़ा करेंगे तो उसी से उनका नाश होगा, उनके भक्ति का, उनके समाज का, उनके संस्था का। जैसे यादवों का कोई नाश नहीं कर पाया, तो चौरासी गांव में क्या सीखना है आपको, एक वाक्यता, यूनिजन, यूनानिमिटी, कोऑपरेशन, सहयोग, एक वाक्यता। ये चौरासी खंबा का मैसेज है हमारे लिए कि वहां पर कभी भी मतभेद नहीं हुआ, और मतभेद भी हुआ तो कृष्ण के हित में हुआ, एक दूसरे के स्वार्थ के लिए या अहंकार के लिए के नहीं हुआ। तो वहां पर अभी विस्मय कथा हो रही है, किसके बाद में, भगवान ने गोवर्धन को उठाया, है कि नहीं विस्मय की बात। अरे 7 दिन का बालक, इतना सा बालक, उसके कोमल कोमल उंगलियां, कोमल कोमल अंग उनके, और उसने सबके आंखों के सामने एक तो पहले पेड़ को ऐंठ दिया, कदम के पेड़ को, उसका नाम क्या है, ऐठा कदम। कितने लोगों ने देखा है ऐठा कदम? आइए ब्रज में आइए, इंसानों का दर्शन कीजिए। क्योंकि तो ग्वाल बालों ने पूछा था कभी क्या करोगे, तो उन्होंने कहा ये पर्वत को उठाऊंगा। आपका घर में से एक बच्चा होगा छोटा सा, बोलेगा पापा मैं राधा वृंदावन चंद्र के मंदिर को उठाऊंगा, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए? केवल आप ठहाका मार के हंसेंगे, हा 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 हा, देखो सबको बताएंगे हमारा बालक सुबह क्या बोला। तो इन्होंने ऐसे ही बोला कि ये पर्वत को उठाऊंगा, तो ग्वाल बाल भी हंसने लगे। ऑफकोर्स चिंता का समय था, लेकिन प्रश्न चिन्ह उत्पन्न किया, कैसे करेंगे, कैसे विश्वास करें आपको। तो उन्होंने ना उनके आंखों के सामने इतने बड़े कदम के पेड़ को उखाड़ दिया, नंबर पेन, वो भी एक आश्चर्य की बात, उसको उखाड़ा और सबके आंखों के सामने उसको निचोड़ दिया, ऐसे ट्विस्ट कर दिया कपड़े की तरह। आज भी वो पेड़ है उधर, प्लीज आइए आप प्रविष्ट वन में, पेठा गांव में, गोवर्धन के दीर्घ परिक्रमा के रास्ते पर वो गांव है, इसमें वो पेड़ को रखा है, अभी तक संभाल के रखा है वार्निश करके। आप देख सकते हो अपनी आंखों से कि इसको किसी ने निचोड़ा है, वो देखकर उनको विश्वास हुआ। फिर भगवान कैसे प्रविष्ट वन, वहां पर एक प्रविष्ट गुफा है, उस वन का नाम प्रविष्ट वन है क्योंकि भगवान ने वहां से भूमि में प्रवेश किया और गोवर्धन को उठाया, इसलिए उसका नाम क्या है प्रविष्ट वन, लोकल नाम क्या है पेठा गांव, पेठा गांव। तो वो प्रविष्ट गुफा है, वो नारायण सरोवर की मूर्ति है भगवान नारायण के, उसके बाजू में गुफा, अब बंद हो गई वो, वहां पर भगवान ने प्रवेश किया और फिर गिरिराज को उठाया, सबके आंखों के सामने, लेफ्ट हैंड से उठाया, पहले हाथ से उठाया, फिर छोटी उंगली में कर दिया उसको। और सब लोग आश्चर्य से देख रहे हैं, क्या हो रहा है, इतना सा बालक इतने बड़े पहाड़ को उठा रहा है, बड़े बड़े बाल बाल डंडी लगा रहे हैं कि हम जरा सहारा करेंगे उसके लिए, बेचारा छोटा सा बालक है। मैया सोच रही है हाथ दुखता होगा उसका, कह रहे हाथ तो चेंज कर ले, थोड़ा मालिश कर दूं, सुबह से दूध भी नहीं पिया, मक्खन भी नहीं खाया, थोड़ा मक्खन खिला दूं, ये हाथ में पकड़ो जरा थोड़ा देर के लिए, मैं इसको जरा, कितनी दर्द होता होगा उंगली का। ऐसे सब चर्चा हो रही है, सब लोगों को आश्चर्य हो रहा है क्या हो रहा है, और उसने ना हाथ बदला ना उंगली बदली, और उसके बाद ऊपर से वो इधर से मुरली निकाली बाहर। और लोगों को सबको पता है जो मैंने बताया आपको पहले, क्या बताया पहले मुरली के बारे में, हाँ तो बोलेंगे अगर ये बजाएगा मुरली, पहले तो पहाड़ थरथर थरथर कांप सकता है, उसके बाद में पिघल सकता है, उसके बाद में गिर भी सकता है, क्योंकि मुरली बजाते हुए ये भी भाव विभोर हो जाता है, तो इसका ध्यान हट गया उंगली से, तो ऐसा कर दिया तो उंगली भी क्या पता है क्या होगा, सब टेंशन में आ गए सब लोग, बोले मत बजाओ मत बजाओ मुरली मत बजाओ, या तो पिघलेगा या तो गिर जाएगा या तो थर थर कांपेगा, कैसे होगा, ऑलरेडी हम लोग इतने, अभी देखो आप एक छोटे उंगली पुत्र के एक उंगली पर पूरा पहाड़ खड़ा है, कितना वो एक दूसरे से अनस्टेबल है, सोचो आप, है तो दिव्य स्टेबल दिव्य स्थिरता में वो विराजमान है, लेकिन देखा जाए अगर माता पिता के दूसरे से एक उंगली पे खड़ा है, इतना बड़ा पर्वत जरा सा भी हिलेगा तो भाड़ करके गिर जाएगा, उसने में भी उंगली मुरली निकालते, वो मना कर रहे हैं मना कर रहे हैं, फिर भी उसने जाकर अपने ओठों को लगाई है और इतनी सुंदर धुन बजाई हुई है, तो सब लोग 7 दिन तक खाना पीना सब भूल गए, ना क्षुधावेश ना तृष्णावेग ना क्षुधावेग ना निद्रावेग ना कुछ वेग, कोई संतप्त नहीं किया उनको उन्होंने, कहते हैं 700 दिन भी अगर उठा के खड़े रहते ना तभी भी वो ऐसे खड़े रहते सब लोग, प्रॉब्लम क्या हुआ, इंद्र का टैंक खाली हो गया इंद्र का टैंक खाली हो गया, इसलिए उनको अपना लीला समाप्त करना पड़ा, अगर इंद्र के पास और किसी और ब्रह्मांड का इंद्र होता और बहुत ज्यादा पानी होता तो 700 दिन 700 रात लीला चलती इनकी, भगवान को क्या प्रॉब्लम है, संबर तक बादल बिचारे बोले महाराज खत्म हो गया खत्म हो गया, बोला बरसाओ जितना हो, मैं अब आगे अभी वज्र लेके आ ही रहा हूं, वज्राघात भी किया कुछ फर्क नहीं पड़ा उधर, तो ये सब आश्चर्य की बात है कि नहीं, तो ये 7 दिन 7 रात मीटिंग नहीं हुई, सब लोग तो मीटिंग में ही थे उधर देख रहे सब लोग ऊपर, उसके बाद में जो पर्वत नीचे रखा फिर मीटिंग हुई, उसमें ये सब चर्चा हो रही है, विस्मय कथा, तुम्हारा बालक तो बड़ा अद्भुत है, लगता है देवता को पुत्र है, कोई ऋषि हो, ऐसे सब बोल रहे हैं, कोई ऋषि होगा कोई सिद्ध महात्मा होगा कोई देवता होगा, तो नंद महाराज पेट पे पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं, अरे देवता ये कैसा देवता है, ये तो मक्खन जरा सा ना मिलने पर इतना तमाशा करता है, देवता लोग ऐसा नहीं करते अरे जब इसको माखन नहीं मिलता है तो ये जाकर किसी के घर में जाके बालक को चिमटा निकालता है, वो घर में पेशाब करके चला जाता है, जो कान में पानी डालता है, ये कोई देवता के लक्षण है, कोई ऋषि के लक्षण है, कोई इंद्रिय संयम में है क्या उसके कुछ, और बोलते हैं देवता होगा शक्तिशाली महान, अरे जब आकाश में बादल गड़गड़ाते हैं ना तो भाग के मेरी गोद में आता है ये, अभी भगवान कोई सिद्ध महात्मा डरेगा क्या उस आवाज से, ये तो भाग के हमारे गोद में आता है, कैसे ऋषि हो सकता है कैसे देवता हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, ठा ठा मार के कहते हैं कि सब लोग पेट पकड़ पकड़ के आसन से जमीन पर आ गए और गोल गोल लोटपोट हो रहे हैं, पेट पकड़ के हंस रहे हंस रहे हंस रहे हंस रहे, उसके बाद में चर्चा हो रही है कि नंद महाराज जैसे ना कभी देखो कैसा ना, समझो आपने 50 साल पहले कुछ एक बात सीक्रेट रखी थी समझो, और 50 साल के बाद बता कि अभी क्या है, अभी तो वो सब सब चले गए होंगे, बूढ़े होंगे, अभी स्थितियां बदल गई होंगी, रिलेवेंस हैज बीन चेंज्ड, तो यू समाउ स्पीक दैट मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट, तो वैसे ना आनंद के विभोरता में अचानक ये जो वर्णन हो रहा है गौरव का कृष्ण का, नंद बाबा बोल जाते हैं क्या, नंद गर्ग मुनि ने तो कहा था कि ये गिरिराज उठाएंगे, ये कितना आसान वाक्य है, हाँ नंद बाबा ने कहा कि गर्ग मुनि ने तो कहा था कि एक नाम उसका गिरधारी होगा आगे जाकर ये पर्वत को उठाएगा, तभी किसको समझ में नहीं आया था, आज समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही नंद बाबा ने यह वाक्य का उच्चारण किया तूफान मच गया उधर, बताइए क्यों, क्या इतनी बड़ी बात है उसमें, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि गर्ग मुनि आए थे, किसी को पता नहीं हुआ था कि नामकरण विधि भी उनका हुआ है, किसी को पता नहीं था गुप्त रूप में किया गया, तो सब लोगों को बहुत क्रोध आया, क्या बात कर रहे हो, कर्क मुनि कहां पर आए, कभी आए यहां पर, कभी नंदबाबा को, बाप रे मैंने कहां से बोल दिया, ये सीक्रेट बात थी, मैंने पता नहीं कैसे बोल दिया, अभी तो बोल दिया, अभी तो कैसे मैं ना बोलूंगा, बताओ कैसे। तो वो समझाने लगे, ऐसे हुआ वैसे हुआ, देखो देखो वो कंस का भय था, वसुदेव का मैसेज था, वो वसुदेव के पुरोहित थे, वो हमारे बालकों को यहाँ पर, तो डाउट आएगा, फिर संकट होगा, जीवन संकट में होगा, हमारे कन्हैया बलुआ का जीवन संकट में होगा, तो इसलिए हमने उसको सलाह मशवरा करके वादा किया, मैं, मेरे दो पत्नियां, दो बालक और आप, इसके अलावा कोई नहीं होगा वहां पर, इसलिए किया। लेकिन जब भी क्रोध का आवेश होता है, कोई मानने को तैयार है क्या? कोई नहीं बोलते, कोई बात मत बनाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम बिरादरी के लोग हैं, भाई है, सब ले, सब झूठ है, ये सब ढोंगी नंबर वन है, इसको हमारे कास्ट से बरी कर दो, जाति से भ्रष्ट कर दो इसको। अभी कितना बड़ा काम कर, देखो ना, अभी एक ऐसा वाक्य बोल दिया, तुरंत इतना आनंद से हंस रहे थे, अभी एकदम बोल रहे कि इसको यहां से निकाल दो, राजा को पद भ्रष्ट कर दो, जाति भ्रष्ट कर दो, राज्य भ्रष्ट कर दो, इट्स बिकम वेरी सीरियस मैटर ना। अभी देखो, अभी सडनली हम लोग सब लोग हंस रहे हैं, अचानक हम, बाप रे अभी क्या होगा, सब टेंशन में आ गए। तो अभी ना नंद महाराज को जाति भ्रष्ट कहने की बातें चल रही है, तो ऋषिमान उनके इतना जीवलग सखा है ना उनके, वो खड़े हो जाते हैं, तो नहीं नहीं ऐसे मत कहना, उनका प्रसंग बहुत बांका था, बहुत कठिन समय था, संकट का समय था, आप समझने की कोशिश करो, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड। तो अभी क्रोध का आवेश कैसा होता है, सब लोग कहते हैं इसको भी बरी कर दो, ये उसका दोस्त बन रहा है, इसको भी निकाल दो हमारी बिरादरी से, नहीं चाहिए ऐसे लोग हमें, जो हमारे से गुपित रखते हैं उनको दोस्त कहते हैं वगैरह, बड़ी बड़ी बातें करते, नहीं चाहिए हमको ऐसे ढोंगी लोग। तो जब ऋषभानु महाराज को जाति भ्रष्ट करने की बात हुई, उस समय एक ग्वाल बालों का, गोपालों का एक ग्रुप खड़ा हो गया, लग रहे सब लोग शांत हो जाओ, क्रोध के आवेश में ऐसे बोलने का काम करोगे नुकसान में आ जाओगे, ध्यान से सुनो, ये जो ऋषभानु महाराज है, इनकी महाप्रता की कन्या की वजह से आज तुम सब लोग यहां पर राक्षस विरहित जीवन जी रहे हो। सब का ध्यान ऐसे, क्या बोल रहे हैं, नई इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, सब शांत हो गए। मैं बताता हूं आपको, ऐसे वो तीसरा ग्रुप जो है ना, वो बोल रहे हैं, कैसा महाप्रताप, क्या लीला हुई, आप जानते हो हम सब लोग नंदगांव आने के पहले कहां थे, गोकुल में थे, रावल में थे, हर रोज वहां पर राक्षसों का आतंक था, कोई दिन था क्या ऐसे जहां राक्षस नहीं आया, इतने से थे, गोद में थे, इतनी सी थे हमारे 6 दिन का बालक, तभी भयंकर राक्षसी आई, और क्या क्या, फर्स्ट बर्थडे को क्या हुआ, उसके बाद 3 महीने में क्या हुआ, हर दिन यहाँ पर राक्षस का आतंक था, इसलिए हम सब लोग ने निर्णय लिया कि यहां से जाना है। लिया था कि लिया था, यस। फिर कहां आए हम लोग, नंदगांव बरसाना आए, नंदगांव बरसाना आने के बाद में कभी राक्षस आया, बताओ राक्षस आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, हम बताते हैं आपको, मतलब मैंने बोल रहा हूं, वो थर्ड ग्रुप वाले लोग बोल रहे हैं, बहुत रोचक कहानी है, बहुत मुझे बड़ा आनंद आता है इसको बताने में। तो जैसे ही ये शिफ्ट हो गए ना, तो नेक्स्ट डे भी रोज के नियम के अनुसार राक्षस आया, तो वो देखते तो पूरा रावल गोकुल खाली, फुल्ली शिफ्टेड, नो ट्रेस ऑफ लाइफ, गाय बैल भैंस बकरी सब चले गए, तो कहां गए, तो उन्होंने इतना मेहनत नहीं किया, वो वापस चले गए, और कंस को बोला महाराज कोई है ही नहीं वहां पर, अच्छा क्या कहाँ चले गए, गायब कैसे हो गए, तो कंस ने अपने सेनापति को भेजा, हाऊ और बुलाऊ उनके दो बच्चों के साथ, 4 लोग गए ऐसे अकराड़ विकराड़ दिव, क्या भयानक शरीर के, और वो लोग रुके नहीं, उन्होंने कहा कि ढूंढो उनको आप, आगे आगे जाके ढूंढो, तो वो सीधे नंदगांव पहुंच गए, और वहां कृष्ण बलराम खेल रहे हैं, तो अभी अभी पकड़ कर उसको मैं समेट देता हूं, दबोच देता हूं, से दोनों ने सबने उनको पकड़ने का कोशिश करने के लिए स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वो पत्थर हो गए। इसका इतिहास ऐसा है कि शांडिल्य मुनि ने जब केशी ने परजन्य महाराज के समय नंदगांव के जगह पर आतंक मचाया था, इसलिए तब परजन्य महाराज वहां से शिफ्ट होकर महावन में गए थे और वहां पर अपना राज्य बसाया था, वहीं पर सब पुत्रों को जन्म दिया उन्होंने, फिर दोबारा आके नंदगांव में बस गए वगैरह वगैरह। उन्होंने तब शाप दिया था कि नंदगांव में कोई राक्षस आएगा तो वो पत्थर हो जाएगा, तो उसके शाप की वजह से कृष्ण को स्पर्श करते ही वो पत्थर हो गए, और अकराल विकराल ऐसे पत्थर की मूर्तियां बनी, उसको फिर यशोदा मैया ने कृष्ण बलराम को डराने के लिए उपयोग किया, देखो हवा आ रहेगा, देखो हवा आ रहा है, चलो भागो। यानी मुझे याद करना, मैं तो आपको एक अच्छी कथा बताता हूँ। तो वो एक दिन यशोदा मैया डांट रही थी कृष्ण को और कहते तुम मानते नहीं हो, देखो हवा आ जाएगा। तो कृष्ण भी बड़े बहुत बार तो भाग गए ऐसे डर डर के दिखा के, उस बार बोले इतनी बार मैंने अवतार लिया कभी हवा को नहीं देखा। मैया सोच रही क्या बोल रहे बालक, इतनी बार अवतार लिया, क्या कुछ बकते रहता है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। हाँ मैं बहुत बार अवतार लिया, तभी कोई हवा का दर्शन नहीं किया मैंने। तो तुम कभी आए थे? तो मैया को बोलते हाँ मैं ही नरसिंह भगवान हूँ, मैं ही वामन देव हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही मत्स्य हूँ, मैं वराह हूँ, मैं कुर्मा हूँ। मतलब बेटा तो बिल्कुल पागल हो गया है, ऐसे सोच ही रही थी माँ। तो हाउ बिलाऊ जहाँ पर पत्थर बन के खड़े हैं ना, अभी आज नहीं हो चोरी हो गए वो, तो हाउ बिलाऊ जहाँ पर खड़े हैं उनको उनकी ओर पीट करके चर्चा हो रही है, पीछे है पीछे ऐसे सर। तो वो कह रहे हैं किधर है किधर है, और वो फिर बात करते करते मैया को बता रहे मैंने अवतार लिए अवतार लिए अवतार लिए। मैया को आश्चर्य हो ही रहा है, उतने में मैया को वो दशावतार दर्शन कर लेते हैं, करा देते हैं। यशोदा मैया ने उस समय तुत क्षणों के लिए दश अवतार का दर्शन भगवान ने कराया उनको, और कुछ क्षणों के बाद में वो सब भूल गए क्या देखा था, फिर अपने बच्चे को गोद में लिया और स्तनपान कराया। है ना मजे की बात। तो ये हाउ बुलाओ बेचारे पत्थर हो गए, लौट के नहीं आए बेचारा। सब लोगों का तो केवल वन वे टिकट ही था, निकाला हुआ था रिटर्न टिकट, लेकिन हर बार रिटर्न टिकट वेस्ट, उधर जाना मर जाना है, लौट के आना भी नहीं है कि मैं मर गया बताने के लिए। तो फिर अगली बार कंस परेशान हो गए, वो कंस खुद आए, मैं ही जाके देखता हूँ, ये सब लोग जाते हैं वापस आते नहीं है, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है उधर। तो ढूंढ के पहुंच गया बरसाना, और कंस जब बरसाना की सीमा में प्रवेश किया तो धोती कुर्ता तो पहना था उसने पुरुष का, अंदर से स्त्री बन गया, कन्या हो गया वो, कंसनी गोपी बन गया वो। समझो मैं अभी कथा करने के लिए बैठा हूं यहां पर और कथा करते करते अचानक मैं स्त्री हो गया, तो मैं बोला बाप रे अभी क्या होगा, कैसे उठूं यहां से, सबको पता हो चलेगा होगा कि मैं स्त्री बन गया हूं, कितना संकोच हो गया होगा उसको। जो आप दिग्विजय कंस है वो, उसने कितना पराक्रम किया था, कोलिया पेड़ को उठा के फेंक दिया था उसने, जरासंध देखा अरे बाप रे ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जो कोलिया पेड़ जिससे विश्व भयभीत है, वो विश्व भयभीत कोलिया पेड़ को उठाकर गोल घुमा के फेंक दिया, दोबारा मेरे अखाड़े में गिर गया वो। तो ये दिग्विजय करने के लिए आ रहा है ना, अरे इससे युद्ध नहीं करना चाहिए, तुरंत अस्थि प्राप्ति अपनी कन्याओं को पुकारा, श्रृंगार करो तुरंत, आपका विवाह करना है आज के आज। दो कन्याओं को लिया, उनको पता नहीं कितने समय में कितना समझाया उसने कि क्यों शादी कर रहा हूं, जाके तुरंत दहेज भेज लेके उनको श्रृंगार करके ले गया, कंस के अखाड़े में लेके गया, उधर तुरंत अस्थि प्राप्ति का विवाह करवा दिया और उसको जमाई बना दिया, दहेज भी दे दिया उधर ही और हाथ भी मिला लिया, चलो दिग्विजय में हाँ आपके फ्रेंड, डोंट वरी। ऐसे कंस महाराज दिग्विजय, अभी कितना पराक्रम बताया उनका, टाइम नहीं है। तो वो कन्या बन गए, वो कन्या, इमेजिन कितना संकोच हो गया, हम वी कैन नॉट इमेजिन, क्योंकि हम लोग कंस जैसे महान योद्धा और दिग्विजय नहीं है, वी आर सिंपल टेन पीपल, और हमें भी संकोच होगा तो कंस को कितना संकोच हो गया होगा। तो कंस महाराज रोने लगे गोपी के रूप में, आंसू बहाने लगे, यह कश्चित गोपियां जो गोबर निकालती है उसके लिए मतलब क्या काम करते हैं, उनके चरणों में गिर रहे हैं वो, बोले मुझे बचाओ, मैं वापस जाने के लायक नहीं हूं अभी, समझो जहां भी जाने का भी तय करूं कहां जाऊं मैं, सब जगह मेरा ही राज्य है, और लोग देखेंगे महाराज कन्या हो गए तो कितना, यही उपाय करना है मेरा, यही पर उपाय होगा तो मैं जा पाऊंगा, कुछ करो कुछ करो। सब गोपियां जैसे आप तालियां पीट रही है, सब तालियां पीट रहे हैं, तालियां लगाओ, बजाओ बजाओ, अरे अच्छा हो गया अच्छा हो गया, बहुत दिनों से बहुत आतंक मचा रहे हो, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, ठीक हो गया जो होना था वो ठीक हो गया। उसके बाद सारी गोपियों ने तालियां पीट पीट कर, पेट पकड़ के हंस हंस कर, हंसी मजाक कर करके 6 महीने तक कंस ने गोपी से कंडे लिपवाए। कैसा होता है कंडा, मन में थोड़ा चिंतन करना जरूरी है उसके लिए। गाय गोबर देती है, वो नीचे गिरता है, फिर उसमें गोमूत्र भी आता है, मिक्स होता है, उसको पहले इकट्ठा करना होता है फावड़े से या हाथ से, फिर रज रज में उसको मिलाना होता है, फिर उसके कंडे बनाने होते हैं, फिर उसको पेड़ पे, टेकड़ी पे, पर्वत पे, इधर छत पे सब लगाने होते हैं, वो हाथ के छिक्के भी उस पे आते हैं ऐसे, फिर उसको सुखाना होता है, फिर सूखने के बाद में उसको इकट्ठा करना होता है, फिर टोकरी में डालना होता है, फिर टोकरी में ला ला के डाल डाल कर उसको एक ऐसा घर बनाते हैं लोग, झोपड़ी बनाते हैं, वो भी गोबर की होती है हाथ के छक्के वाली, और उसमें उसको सजाते हैं, वो फिर साल भर यूज करते हैं। 6 महीने तक कंस के हाथ से उन्होंने कंडे लिपवाए। इसमें बहुत एक समझने वाली बात है, थोड़ी आई एम टेकिंग लिटिल मोर टाइम, बट बहुत जरूरी बात यह है, देखो हम सब लोग साधना कर रहे हैं, और समझो आप लोग गोपी बन गए तो आपको आनंद आएगा कि दुख होगा, बताओ हृदय से बताओ, वी विल बी हैप्पी होपफुली, क्योंकि हम लोग अभी चाहते क्या है, गोपी भरतुर पद कमल और दास दास अनुदास ना, अभी वो ऑलरेडी समझो आपको गोपी शरीर प्राप्त हो गया तो आपका अल्टीमेट परफेक्शन हो गया ना, ऑलरेडी आप भगवान के धाम में भगवान के सखियों के साथ ऑलरेडी योग्य रूप में सेवा करने से योग्य हो गए कि नहीं आप, तो कंस का भाग्य था कि नहीं था, लेकिन भाग्य होने से क्या होता है, मति होनी चाहिए अनुकूल। कंस को भाग्य तो प्राप्त हो गया, राक्षस होने पर भी तत्क्षण गोपी बन गया हो, अगर चाहता तो खुशी से जिंदगी भर वहीं रहता, बोले क्या करना है कंस महाराज बन के, इतना पाप करके गोपी बन गया, आनंद लो, परिपूर्णता जीवन की प्राप्त हो रही है, लेकिन 6 महीने तक जीवन की परिपूर्णता वाली अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी कंस रोता रहा रोता रहा रोता रहा, ओनली बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कॉन्शियसनेस। तुम लोग को क्या करना है, भक्ति का मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस पर काम करना है, भक्ति इज प्रिपेयरिंग योर कॉन्शियसनेस, मर्सी में कम एंड गो, बट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड द मर्सी विल हैव नो इफेक्ट ऑन यू। परम कृपा हो गई उसके ऊपर भामिनी जी की, श्रीमती राधा रानी की, लेकिन उसको वो क्या कहते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, डिनायल में ही रहा, डिनायल, कितनी बड़ी बात है, देखो आप वहीं पर उसका जीवन कल्याण हो जाता अगर वो बोलता थैंक यू मैडम, लेकिन नहीं बोल पाया वो, रोता ही रहा, हाँ एक्सपोनेंशियली और अधिक तीव्रता से रोता रहा वो। 6 महीने के पश्चात वृषभानु महाराज छोटी सी राधिका को लेकर आए उंगली पकड़कर, तो वो चरणों में दंडवत प्रणाम किया उसने, महारानी महाराज बताओ बचाओ, तो वृषभानु महाराज अपनी बेटी को बोलते हैं, देखो वृषभानु महाराज भी क्या करेंगे बेचारे, अगर वो लड़की हो गया तो वो क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो जानते हैं ये कुछ कर सकते, तो अपने बेटी को आदेश दिया, बेटी माफ कर दो उसको, देखो कितना गिड़गिड़ा रहा है ना, पश्चाताप कर रहा है, कृपा को ले लो वापस, ऐसे याचना कर रहा है, प्लीज टेक द मर्सी बैक, आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई ओरिजिनल पोजिशन, ऐसी प्रकार की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन पश्चाताप कर रहा है। तो फिर राधा रानी छोटी सी सी उंगली उठाई, कंस दोबारा आओगे ना, परमानेंट कन्या बनोगे। दोबारा आओगे तो निरंतर काल के लिए कन्या बन के रहोगे, अभी माफ कर देती हूं, ये मेरा कुंड है यहां पर किशोरी कुंड, इसमें छलक लगाओ, छलांग लगा दो, फिर पुरुष का शरीर प्राप्त करोगे और दोबारा यहां पर लौट के नहीं आना। कंस ने जैसे था वैसे छलांग लगाई, तुरंत महाराज पूरा दोबारा कंस महाराज पुरुष बने, और वैसे ही गीले कपड़े से जो भागे मथुरा तक भागे, पीछे मुड़कर भी देखा नहीं कहीं महारानी का मूड चेंज हो गया तो। ऐसा है, अब ये कहानी कहां चल रही है, कौन बता रहे हैं, तीसरा ग्रुप दो ग्रुप को बता रहे हैं, महाराज शांत हो जाओ, इनकी महाप्रतापी कन्या है ना, इसकी वजह से यहां पर कोई राक्षस नहीं आया है, तब जाकर सारा 84 खंबा शांत हो जाता है। तो ये महाप्रतापी राधा रानी की कथा है, क्यों कैसा राधा रानी किया, क्योंकि राधा रानी ने ये चाहा था कि नंदगांव बरसाना और यावट ये इलाके में उनको अंतरंगोत्तम लीलाओं को प्रकट करना था, मोस्ट इंटीमेट पास टाइम्स, अगर कोई मैं बताऊंगा अभी समय मिलेगा तो बाद में कैसी लीलाएं होती है, उस लीलाओं में राक्षस आ ही नहीं सकता बीच में, हाउ कैन ही कम एंड इंटरप्ट द लीला लाइक दिस, गौचारण हो रहा है तो ठीक है, उसमें राक्षस आके बाधा डाल के मर सकता है, फिर वापस भोजन हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर जो नंदगांव बरसानी में जावट में लीला हो रही है, उत्कट लीला है कहते हैं उसको, यू कैनॉट इमेजिन। उसका रस, उसका उत्कटता, उसकी अंतरंगता, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, उसमें कोई राक्षस आके बाधा नहीं डाल सकता। तो भगवान के साथ में अंतरंग लीलाओं को संपन्न कराने के लिए राधा रानी ने राक्षसों को दूर रखा इस लीला के माध्यम से। बोलो श्रीमती राधा रानी की, राधा रानी महाविर्भाव महोत्सव की जय। जय श्री राधे। जय हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।